عبادت اپنے نئے سال کی عبادت کا سلسلہ اب ہم شروع کر رہے ہیں۔ نئے سال کے بعد یہ میری پہلی حقیقی موم ہے۔ او میں چند راتوں سے گھر پر تھا، پھر وہاں سے فوٹ ہوا چوکا گیا۔ کیا آپ اس کا تلفظ اسی طرح ادا کرتے ہیں؟ میں سمجھ نہیں سکا آپ ہوا چوکا کو ایچ کے ساتھ کیسے لکھتے ہیں۔ ہم ایسا نہیں کریں گے، ہم پیچھے دیکھنے والے آئینے کا معائنہ نہیں کریں گے۔ پیچھے والے آئینے سے آپ صرف پیچھے دیکھتے ہیں اور جانتے ہیں کہ آپ کہاں سے آئے ہیں۔ ہم آگے دیکھ رہے ہیں تاکہ معلوم ہو سکے کہ ہم کہاں جا رہے ہیں۔ دیکھیں، جو کچھ ماضی میں تھا، پولس فرماتا ہے، جو چیزیں پیچھے رہ گئی ہیں انہیں بھول کر میں مسیح میں اعلیٰ بلاحٹ کے نشان کی طرف بڑھتا جا رہا ہوں۔ اور ہم یہی کچھ کرنا چاہتے ہیں۔ ایک آدمی، ہم 15-16 سال پہلے کی بات کر سکتے ہیں، جب میں پہلی بار فینکس میں آیا تھا، تب سے بہت سی اچھی اور بری چیزیں پیش آئی ہیں، اور یہ سب عدالت کے دن کے لیے خدا کے ہاتھوں میں ہیں۔ لیکن اب میں جس چیز کا منتظر ہوں وہ یہ ہے کہ میں آنے والے سال میں بادشاہی کی بہتری کے لیے کیا کروں گا۔ خدا کی بادشاہی کے لیے زیادہ سے زیادہ کام کرنے کی کوشش کروں گا۔ اب آج دوپہر میں مسیح کلیسیا کو اس نئے سال کا پیغام سنانا چاہتا ہوں، اور پھر کل رات ہم بیماروں کے لیے دعا کریں گے، اور اس کے درمیان ہی دعائیہ کارڈ تقسیم کریں گے۔ مجھے لگتا ہے عبادت 7:30 بجے شروع ہوگی۔ بہتر ہے کہ آپ 6 یا 6:15 بجے تک یہاں آ جائیں، پھر ہم آپ کو دعائیہ کارڈ دے پائیں گے تاکہ عبادت کے باقی حصے میں کوئی مشکل نہ ہو۔ ہم رمادہ کی انتظامیہ کے شکر گزار ہیں کہ انہوں نے ہمیں اس عبادت کے لیے یہ عمارت فراہم کی ہے۔ اس کنونشن سے پہلے خداوند انہیں برکت دے۔ اور اب اگر آپ چاہیں تو حوالہ جات نکال لیں، م پڑھنے جا رہے ہیں۔ میں یسعیاہ کی کتاب کے 60 باب کی دوسری آیت، بلکہ پہلی اور دوسری آیت پڑھنے لگا ہوں، اور زبور 62:1-8، زبور 62:1-8 پہلے پڑھتے ہیں۔ میری جان کو خدا ہی کی آس ہے، میری نجات اسی سے ہے، وہی اکیلا میری چٹان اور میری نجات ہے، وہی میرا اونچا برج ہے، مجھے زیادہ جنبش نہ ہوگی۔ تم کب تک ایسے شخص پر حملہ کرتے رہو گے جو جھکی ہوئی دیوار اور ہلتی ہوئی باڑ کی مانند ہے، تاکہ سب مل کر اسے قتل کرو؟ وہ صرف اسے اس کی شان و شوکت سے گرا دینے کے لیے مشورہ کرتے ہیں۔ وہ جھوٹ میں خوش ہوتے ہیں، وہ اپنے منہ سے تو برکت دیتے ہیں پر دل میں لعنت کرتے ہیں۔ سیلا۔ اے میری جان، خدا ہی کی آس رکھ، کیونکہ اسی سے مجھے امید ہے، وہی اکیلا میری چٹان اور میری نجات ہے، وہی میرا اونچا برج ہے، مجھے جنبش نہ ہوگی۔ میری نجات اور میری شوکت خدا کی طرف سے ہے، خدا ہی میری قوت کی چٹان اور میری پناہ ہے۔ اے لوگو، ہر وقت اس پر توکل کرو، اپنے دل کا حال اس کے سامنے کھول دو، خدا ہماری پناہ گاہ ہے۔ سیلا۔ جس طریقے سے داؤد کہہ رہا ہے، مجھے یہ انداز پسند ہے۔ چٹان، آپ غور کریں، بہت بار کہا گیا ہے خدا میری چٹان ہے۔ آپ کو معلوم ہے بائبل میں چٹان سے کیا مراد ہے؟ چٹان مکاشفہ کو کہتے ہیں۔ جیسے پترس نے کہا، تو زندہ خدا کا بیٹا مسیح ہے، اس نے کہا، مبارک ہے تو شمعون بر یونا، اور اس چٹان پر یعنی اس مکاشفہ پر خدا نے اس پر یہ ظاہر کیا تھا، خون اور گوشت نے یہ بات تجھ پر ظاہر نہیں کی، بلکہ میرے باپ نے جو آسمان میں ہے، اور اس چٹان پر یعنی اس مکاشفہ پر میں اپنی کلیسیا بناؤں گا۔ اور داؤد یہاں کہہ رہا ہے، خدا میری چٹان ہے، میرا مکاشفہ ہے۔ اب یسعیاہ کے 60 باب کی پہلی اور دوسری آیت کو دیکھتے ہیں۔ اٹھ منور ہو، کیونکہ تیرا نور آ گیا اور خداوند کا جلال تجھ پر ظاہر ہوا، کیونکہ دیکھ تاریکی زمین پر چھا جائے گی اور تیرگی امتوں پر، لیکن خداوند تجھ پر تالا ہوگا اور اس کا جلال تجھ پر نمایاں ہوگا۔ آئیں دعا کرتے ہیں۔ خداوند یسو، ہم ان باتوں پر غور کر رہے ہیں، اب ہم اس عبادت کا آغاز تیرے جلال کے لیے کرتے ہیں۔ اے باپ، ہمیں برکت دے، ہم یہ یسو کے نام میں مانگتے ہیں، آمین۔ अब आज दोपहर मेरा उन्वान सिर्फ एक लफ्ज है, शालोम, और अबरानी में इसका मतलब है सलामती। सलामती ये एक सलाम है, यानी आप पर सलामती हो, या खुश आमदीद, सुबह खैर, या किसी भी वक्त का सलाम हो सकता है। लेकिन यहाँ अबरानी में जो मरकजी लफ्ज मैंने देखा है, इसके बहुत से मानी हैं, लेकिन सब एक ही चीज से जुड़े हुए हैं, सलामती। जैसे हम इस नए साल का सामना कर रहे हैं, तो हम दोनों चीजों का सामना कर रहे हैं, जैसे मैंने पढ़ा है, तारीकी और रोशनी। अब हम देखते हैं कि दाऊद ने यहाँ बात करते हुए कहा है, खुदावंद पर भरोसा रखो, उस पर भरोसा रखो। यसाया ने कहा है, इस कौम पर गहरा अंधेरा छाने वाला है, लेकिन कलीसिया के उठने और चमकने के लिए नूर का जलाल मौजूद है। बस हम इस साल का सामना बाकी सालों की तरह ही कर रहे हैं। माजी में की गई गलतियों पर अफसोस है, और हम मुस्तकबिल में मसीह की जलाली रोशनी के मुंतजिर हैं। कोई शक नहीं, अगर हम इस साल जिंदा रहते हैं तो हमें बहुत सी गलतियां नजर आएंगी जो हमने की हैं, और हम इसकी तवक्को करते हैं, क्योंकि हर चीज के साथ अच्छे और बुरे दोनों पहलू होते हैं। ये औसत का कानून है जिस पर हम इस जिंदगी में अमल करते हैं। लेकिन हमें बहुत खुशी है कि हमारे पास एक शफायती है जो खुदा के दाएं हाथ बैठा हुआ है और शफायत कर रहा है। जब हम अपनी गलतियों का इकरार करते हैं कि हमने गलती की है, तो वो हमें माफ कर देता है। वो फजल और रहम से भरा हुआ है और हमारी गलतियों को माफ कर देता है। इस गहरी तरीकी पर मैं पहले बात करना चाहता हूँ, क्योंकि ये आज की दुनिया में बहुत ज्यादा है, और ये वक्त के साथ साथ गहरी और गहरी होती जा रही है। हर साल हमें महसूस होता है कि रूहानी एतबार से दुनिया मजीद तारीख होती जा रही है, क्योंकि लोग तारीकी में टटोल रहे हैं, गुनाह बढ़ता जा रहा है। अब हम उन हालात से गुजर रहे हैं जो हमारे दरमियान है, सदर का कत्ल और बाकी चीजें हैं, और लोग हमारे मुल्क में कत्ल किए जा रहे हैं। हालांकि हम सोच नहीं सकते थे कि जदीद तहजीब के जमाने में ऐसा होगा, लेकिन हमारे यहाँ ये हो गया है, क्योंकि गहरी तारीकी लोगों पर छाई हुई है। अब ऐसे लोग हैं जो रोशनी की जानिब नहीं मुड़ेंगे। इसलिए एक ही बात है जो मैं आने वाले साल के लिए कह सकता हूँ, जैसे जैसे साल गुजरता जाएगा, ये लोग गहरी तारीकी में मजीद डूबते जाएंगे। लेकिन वो लोग जो इस साल में रोशनी की जानिब अपना रुख कर लेंगे, वो ज्यादा से ज्यादा रोशनी में चलते जाएंगे उस कामिल दिन के लिए जिसके हम मुंतजिर हैं, और उसके जहूर के सामने सारी तारीकी खत्म हो जाएगी। और इसकी वजह है, इसलिए आज मैं खुदा की जिंदा कलीसिया से कहता हूँ शालोम, क्योंकि हम उसका नूर हैं। यीशु ने कहा, तुम दुनिया के नूर हो। अब नबी ने कहा है, इस कौम पर घनी तारीकी है, दुनिया के लोगों पर घनी तारीकी छाई हुई है। क्या आपने गौर किया है, गुज़िश्ता सालों में मर्द और औरतें जो मेरी उम्र के हैं, देखें, हर साल ऐसा महसूस होता है जैसे तारीकी मजीद और मजीद बढ़ती जा रही है। मैं गुज़िश्ता रोज बात कर रहा था और मैंने बीवी से कहा, तुम जानती हो, गुजरते सालों की निस्बत ऐसा महसूस होता है और ऐसा लगता है कि लोग असली चीज से दिन ब दिन दूर होते जा रहे हैं, जबकि इन्हें इसके करीब से करीब तर होना चाहिए था। मैंने आदमियों के दरमियान गौर किया है, और मैंने औरतों को भी सड़कों पर देखा है। मैंने इनकी ख्वाहिशात पर गौर किया है, और ये क्या करना पसंद करते हैं देखा है, और ये लोग हर वक्त अपने रवैये बदलते रहते हैं। मर्द औरतों जैसे होते जा रहे हैं, और औरतें मर्दों जैसी होती जा रही हैं, और ऐसा लगता है इसे रोकने का कोई भी तरीका नहीं है। मैं मुल्क भर में घूमता हूँ, इस चीज के खिलाफ मुनादी करता हूँ, और अगले साल जब वापस आता हूँ तो ये चीज पहले से भी बदतर होती है जब मैंने आगाज किया था। ये लोग सही काम करना चाहते हैं, लेकिन इनके अंदर कोई ऐसी चीज है जो इन्हें सही काम करने नहीं देती है। वो चीज इन पर दबाव डालती है, इन्हें मजबूर करती है। वो चीज पूरी जमीन पर एक बारी तारीख धुमकी मानित छाई हुई है, सिर्फ फिनिक्स में नहीं बल्कि पूरी दुनिया में। ऐसा लगता है कि बस एक ही ग्रोही अंधेरा है जो जमा होता जा रहा है, और मुसलसल गहरा और गहरा होता जा रहा है, और हकीकी मर्दानगी और हकीकी जनानगी को दबा रहा है। मैं फितरी तौर पर बात कर रहा हूँ, और ऐसा लगता है कि ये गिरजाघरों में दिन ब दिन ज्यादा बढ़ता जा रहा है। और फिर जब आप खड़े होकर इसके खिलाफ कुछ कहते हैं, तो वो आपको ऐसा करने पर मुजरिम ठहराते हैं। देखें, आप इसे आता हुआ देख सकते हैं, और फिर जब आप इसके खिलाफ बोलते हैं, तो कोई इसे गलत समझ लेता है। कभी कभार खवातीन इसे गलत समझ लेती हैं, और कभी कभार मर्द इसलिए वो गलत रवैया इख्तियार कर लेते हैं। कभी कभी अच्छे आदमी को भी ऐसी चीजों का सामना करना पड़ता है ताकि अपनी मजहबी जमातों में अपने हकूक बरकरार रख सके, क्योंकि अगर वो ऐसा नहीं करते हैं तो उन्हें जमात से निकाल दिया जाता है और फिर वो अपने दम पर अकेले रह जाते हैं। और फिर जब मखसूस लोगों से बाहर निकाल दिया जाता है तो फिर किसी और में शामिल होना मुश्किल हो जाता है, क्योंकि जब उन्हें मालूम हो जाता है आपका ताल्लुक फलां ग्रोह से था तो फिर वहां आपके साथ क्या हुआ था। फिर आपको अपने ईमान पर कायम रहना होगा, या अकेले चलना होगा, या अपने एतकाद से इनकार करना होगा। इसलिए ये काम लोगों के लिए काफी मुश्किल हो जाता है, और ऐसा लगता है यही वक्त है जिसमें आप हकीकी नमाया फर्क नहीं देख सकते हैं जैसा इंसान को होना चाहिए था। मैं अब रूहानी बात से हटकर इसे फितरी या जिस्मानी पहलू में लाकर देखते हैं। मुझे ऐसा लगता है कि मर्द गुलाबी जूते पहने हुए हैं और इस तरह के मुख्तलिफ काम कर रहे हैं, और ऐसा लगता है जैसे वो औरतों की तरह बनते जा रहे हैं, और औरतें सिगरेट पी रही हैं। अब उनके हाथ में सिगार भी है और वो बिल्कुल मर्दों की तरह अपने बाल कटवा रही हैं, और ऐसा लगता है कि औरतों की नफासत, जनानापन, नजाकत खत्म हो गई है, और हकीकी मर्दानगी रखने वाला मर्द भी खत्म हो गया है। ऐसा लगता है कि वो सिर्फ किसी बुराई के बारे में ही सोचता रहता है। मेरा ख्याल है आज तकरीबन वैसी ही हालत है जैसी इब्तिदा में थी। इंसान के तसव्वुरात मुसलसल बुरे होते जा रहे हैं। हमारे प्रोग्राम, टेलीविजन और रेडियो सब बगैर सेंसर के हैं। लोग तकरीबन हर वो बात कह सकते हैं जो वो कहना चाहते हैं, यहाँ तक कि लोग कस्में खाते हैं और ऐसे गंदे और फौश लतीफे सुनाते हैं, जबकि ऐसा नहीं होना चाहिए। देखें, ऐसा किसी शराब खाने में भी नहीं होना चाहिए, तो भी वो ये सब बातें टेलीविजन और रेडियो पर कहते हैं और सीधा सब लोगों के घरों में पहुँचाते हैं। ऐसा लगता है कि घना अंधेरा पूरी तरह से छा गया है। ऐसा लगता है पूरी दुनिया आलूदा हो गई है। अब सालों से मैंने खुदा के कलाम को एक मियार पर रखने की कोशिश की है, और मैं इस आने वाले साल में इस मियार को बरकरार रखने के लिए अपनी जिंदगी में पहले से कहीं ज्यादा पुरअज़म हो गया हूँ। देखें, इस कलाम के साथ ठीक खड़े रहें। अब मुझे उम्मीद है अगर किसी के जहन में ये ख्याल आता है कि मैं ये सब अकलमंद बनने के लिए कर रहा हूँ, तो फिर भाई बहन आप बिल्कुल गलत हैं। मैं ये इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि मैं ये करने का पाबंद हूँ। मैं इस कलाम के साथ कायम रहने का पाबंद हूँ। जो कुछ भी ये कहता है इसकी जाती तफसीर ना करें, इसे वैसे ही रहने दें जैसे ये है। अब शायद कोई ऐसा करे और इसकी तफसीर करने की कोशिश करे ताकि इसे थोड़ा मुख्तलिफ बनाए, लेकिन मैं ऐसा नहीं कर सकता हूँ। मैं बस एक ही जुबान जानता हूँ जो यहाँ लिखी हुई है। जैसा ये लिखा है वैसा ही ये है। अब ये तकरीबन 3 साल पहले की बात है। अब ये होगा क्योंकि घर पर मेरे होम चर्च में रूहुल कुद्दस ने मुझसे बात की थी और कहा था ट्यूसान को जा, वहाँ कोई चीज इंतजार कर रही है। मैं इसी प्लेटफॉर्म पर खड़ा हुआ था और आप में से हर एक को बताया था खुदावंद यूं फरमाता है कुछ होने वाला है। हो सकता है यहाँ सैकड़ों लोग बैठे हुए हों जो इस बात को जानते हैं। मैंने आपको बस वही बताया था जो मैंने देखा था। ये पैगाम टेप पर मौजूद है। जनाब, ये कौन सा वक्त है? मैंने फरिश्तों के एक झुंड को देखा था, एक मखरूत की शक्ल में, जो ट्यूसान के शमाल में उतरा था, ट्यूसान के शमाल में ऊपर से नीचे आया था, और उन्होंने मुझसे किसी चीज के मुतालिक बात की थी और मुझे मालूम नहीं था कि वो क्या थी। और फिर वहाँ एक दिन वो आदमी आज भी यहाँ मौजूद है, बल्कि दो हैं जो मेरे साथ उस जगह मौजूद थे, और उन्होंने आसमान में इसकी तस्वीर बना ली थी और फिर इसे मैगजीन में शाया किया था। मैंने सोचा मेरे पास एक कॉपी है, मेरे पास है, यही है। आप इस कॉपी को यहाँ लाइफ मैगजीन में देख सकते हैं। ये बिल्कुल वैसा ही है जैसा पाकरू ने कहा था कि होगा, और वहाँ 7 फरिश्ते बिल्कुल इसी तरह खड़े हुए थे जैसे आप मुझे यहाँ खड़ा हुआ देख रहे हैं। और मुझे बताया गया कि मैं अपने घर वापस चला जाऊँ ताकि उन वेदों को जो असलाकार जमानों में समझने में नाकाम रहे थे, समझो, जो कि बाइबल के वेद हैं, जो 7 मोहरों में छुपे हुए थे, उन्हें आश्कारा किया जाएगा। मैं हर किसी को चैलेंज करता हूँ, बस उन 7 मोहरों को ले और उन पर गौर करें और उनमें गलती ढूंढने की कोशिश करें। देखें, क्योंकि ये खुदा की तहरीक से खोली गई हैं। इनसे पहले मैंने 7 कलीसिय जमानों पर मुनादी की थी और उन्हें मैंने अपने टेबरनेकल में ब्लैक बोर्ड पर खाका बनाकर दिखाया था। मेरी तालीम, मैं यहाँ तालीम की मुनादी नहीं करता, बल्कि अजीम अंजील के बुनियादी असूलों की मुनादी करता हूँ, क्योंकि मैं भाइयों के साथ हूँ और शायद वो कुछ मुख्तलिफ राय रखते हूँ, और मैं वो बातें यहाँ के लोगों के सामने नहीं बताता हूँ। मैं सिर्फ कलाम की असल बुनियाद के साथ कायम रहने की कोशिश करता हूँ, जिन पर हम ईमान रखते हैं और मेरे टेबल निकल में वो इसे रिकॉर्ड कर लेते हैं। अगर आप उन्हें सुनना चाहते हैं तो आप उन्हें ले सकते हैं। अगर आपका पास्टर चाहता है कि आप उन्हें ना लें तो फिर मत लें। देखें, ये आप पर मुनसर है, लेकिन वहाँ सात कलीसिय जमानों पर मुनादी करते हुए खुदा की तरफ से तस्दीक की गई थी। मैं वहाँ खाका बना रहा था कि कैसे कलीसिय जमानों में तारीकी दाखिल हुई नासिया में, और कलीसियल फरिश्ते पयंबर कौन थे। ये सब कुछ बिल्कुल दुरुस्त था, क्योंकि जैसे ही आखिरी कलीसिय जमाने पर मैंने इतवार की सुबह बोला तो 11 बजे वो अजीम नूर उस इमारत में दाखिल हो गया, और जितने लोग वहाँ बैठे हुए थे उनके सामने ये हुआ और नीचे आकर दीवार की एक तरफ चमकने लगा, और तमाम लोगों के सामने ये हुआ, और कलीसिय जमानों का बिल्कुल वैसा ही खाका बनाया जैसा मैंने ब्लैक बोर्ड पर बनाया था। अब इस बात को साबित करने के लिए यहाँ सैकड़ों और सैकड़ों गवाह मौजूद हैं। बस खैर, अब हमें ये मालूम है, खुदा हमेशा जमीन पर चीजें दिखाने से पहले आसमान पर चीजें दिखाता है, बिल्कुल जैसे मजूसियों ने सितारे की पैरवी की थी और वगैरह वगैरह। सबसे पहले एक आसमानी निशान वकू पजीर होता है, फिर जमीनी निशान आसमानी निशान की तस्दीक करता है। खुदा निशानों और मौजजों के जरिए काम करता है। ये निशानात और मौजजे ईमान लाने वालों के दरमियान होते हैं। यहूदी हमेशा कोई निशान तलाश करते थे, क्योंकि वो खुदा के चुने हुए थे और वो निशान को देखते हैं। हमें निशान दिखा, फिर हम यकीन करेंगे। और फिर जब मजूसी अपनी कहानी के साथ आए, और मजूसी मसीह की विलादत पर नए साल के आगाज पर आए, और हमें ये मालूम है कि बाइबल में चांद चर्च को जाहिर करता है। ये सूरज की गैर मौजूदगी में जमीन पर रोशनी दिखाता है। मुकाशवा 12 बाब इसकी ठीक वजाहत करता है। एक औरत आफताब को ओढ़ी हुए थी और चांद उसके पांव के नीचे था, और सूरज की गैर मौजूदगी में जब सूरज दूसरी जानिब चला जाता है, चांद जमीन पर सूरज की रोशनी को मनक्स करता है। चर्च को दुनिया में खुदा के बेटे की गैर मौजूदगी में यीशु मसीह की अकासी करनी चाहिए। हम सब इस पर ईमान रखते हैं। ये एक अजीब बात है, क्योंकि बहुत कुछ मुख्तलिफ हो रहा है, लेकिन यहाँ बात करते हुए 1933 में पोप अपनी जगह से हट गया, बिल्कुल रोम से निकलकर मुकद्दस सरजमीनों का दौरा किया। वो यहाँ भी आएगा, और अजीब बात ये है, उसके रोम छोड़ने से चंद रातें पहले ये तारीख में पहली बार हुआ था, चांद नीचे आ गया और मुकम्मल तौर पर ग्रहण में चला गया। बस ये क्या था? बेटे की जाहिर शुदा रोशनी पर साया डाल रहा था। इसमें उसने ऑर्थोडॉक्स वालिद से बात की और वो सब मुत्तफिक हैं, और पोप ये फेलोशिप के लिए करता है, एक अच्छा भाईचारा रखने के लिए करता है, जो कि फितरी कान के सुनने में सबसे शानदार चीज है जो हो सकती है, लेकिन एक रूहानी कान के लिए ये तारीकी है। और ऐसा है कि हम चर्चिस, प्रेसबिटेरियन, मेथोडिस्ट, बैप्टिस्ट और पेंटिकोस्टल होते हुए इस खराबी में किसी भी वक्त शामिल हो सकते हैं, और वो जानते हैं कि हमारी बाइबल हमें इससे मुख्तलिफ तालीम देती है। ये मेरे लिए एक हैरत अंगेज बात है कि कैसे एक रूस से भरा हुआ आदमी ऐसी जगह में बैठकर ये कह सकता है। ऐसी जगह पर बैठकर रूहानियत महसूस होती है, लेकिन मेरे लिए ये खौफनाक जगह है। अब मेरा ख्याल है आपने यहाँ फिनिक्स में इसे हासिल कर लिया है। अगर कोई यहाँ, कितने लोगों ने कभी उन तस्वीरों को देखा है जो मैंने कलीसिय जमानों की बनाई थी? अपने हाथों को खड़ा करें। मेरा ख्याल है, देखें कैसे खुदा ने उन्हें बादलों में गुज़िश्ता रात बनाया था। ये बिल्कुल वैसे ही खाके हैं जैसे टेबरनेकल में बनाए गए थे, बिल्कुल वैसे ही है जैसे रूह कुद्दस ने 3 साल पहले तहरीक के जरिए टेबरनेकल में बनाए थे, और फिर ये बादलों में भी जाहिर हुए। 2 या 3 गवाहों की जुबान से हर एक बात सच्ची साबित होती है। पहले रूह कुद्दस की तहरीक से मैंने इन्हें प्लेटफॉर्म पर बनाया था, फिर वो खुद नीचे आ गया और खुद इसकी तस्दीक की, जैसे चांद और रोशनी बाहर निकलती जा रही है, अलग हो रही है। बिल्कुल वैसे ही ये लोदिकिया का जमाना दोबारा मुकम्मल तारीकी में जा रहा है, और यहाँ वो खुद नीचे आता है और चांद पर इसकी तस्दीक करता है। बिल्कुल ठीक उसी वक्त पर जब सारे चर्चिज एक साथ इत्तेहाद कर रहे हैं और फेडरेशन ऑफ चर्चिज में जा रहे हैं। कोई हैरत की बात नहीं, यशायाह ने फरमाया है, गहरी तारीकी इस जमीन पर और इसके लोगों पर छा चुकी है। मैं जानता हूँ कंज्यूम के खिलाफ बोलना मकबूलियत नहीं है, लेकिन ये हैवान की छाप है। ये वो चीज है जो हमें बराह रास्त इसी की तरफ ले जा रही है। ये चीज हैवान के लिए एक मूर्त बना रही है। मैं ये बात गुस्से में नहीं कह रहा, मैं ये इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि ये सच्चाई है भाइयों। एक वक्त आएगा जब फिनिक्स उठ खड़ा होगा और हो सकता है मैं तब तक चला जाऊं, लेकिन आपको मालूम हो जाएगा ये खुदावंद यूं फरमाता है, ये सच्चाई है। और कैसे पाकरू ने उन पैगामात की तस्दीक की थी और इन चीजों की पेशनगोई की थी और एक बार भी नाकाम नहीं हुआ। बस हम अंधेरे में हाथ पांव क्यों मार रहे हैं? लोग बहुत देर होने से पहले क्यों नहीं जाग जाते? एक ना एक दिन बहुत देर हो जाएगी और आप पहले ही छाप ले चुके होंगे और फिर इसके बाद कुछ नहीं हो सकता। फिर आप इसके बारे में कुछ भी नहीं कर सकते हैं। आप उस सिस्टम में फंस जाएंगे और आप पर उस सिस्टम की छाप लगा दी जाएगी। आप मसीह के पास क्यों नहीं आते हैं ताकि आप यीशु मसीह की खुशखबरी की रोशनी से भर जाएं, उसकी जिंदा करने वाली ताकत आपको आजाद कर दे और आपको एक ऐसा दीप बना दे जो पहाड़ पर रखा जाए। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता अंधेरा कितना है। कहें ठीक है हमें ये क्यों करना चाहिए, बाकी सब सुने। अभी वो वक्त है जब सबसे ज्यादा अंधेरा है ताकि रोशनी चमकाई जाए, क्योंकि रोशनी अंधेरे में सबसे ज्यादा चमकती है। हमने रोशनी को उस जगह चमकाना है जहाँ अंधेरा है। नबी कह रहा है गहरी तारीकी इन लोगों पर छा जाएगी और ये यकीनन सच्चाई है। अब हम देखते हैं चांद ने रोशनी को मनक्स करने के लिए क्या किया। खुदा ने पहले ब्लैक बोर्ड पर दिखाया, फिर अपनी खुद की हजूरी के साथ आसमानों में खुद निशान दिखाया और फिर पोप रोम से निकलकर फलस्तीन में चला गया, जो एक आम आंख के लिए तो ऐसा था कि लोग चिल्ला रहे थे और मुंह के बल गिर पड़े थे और उन्होंने उस आदमी की पूजा की। मैं उसके खिलाफ इससे ज्यादा नहीं हूँ जितना उस मुनाद के खिलाफ हूँ जो ऐसी चीजों में शामिल होता है। ये सब एक ही रूम में है। ऐसा लगता है जैसे गहरी तारीकी मुकम्मल तौर पर लोगों पर छा गई है और यहाँ तक कि लोग बस यही सोचते हैं हमें बस चर्च में जाना है और यही काम करना है ताकि एक अच्छा इंसान बन जाए, बस अपना नाम रजिस्टर में दर्ज करवाना है और कोई पुरअसरार काम हो जाएगा। जब आप मर जाएंगे तो खुदा चाबी घुमाएगा और उस रूह को बदल देगा जो आपके अंदर है। आप गलती पर हैं। जब आप मरते हैं तो वो रूह जो आप में है वो हमेशा के लिए वैसी ही रहेगी। और याद रखें फरीसी सदूकी और बाकी ऐसे लोग वो सब बहुत मजहबी लोग थे। खुदा गैरतमंद खुदा है, वो गैरत रखता है और वो चाहता है कि उसकी बीवी पाक हो, वो चाहता है कि वो पाक दामन कंवारी हो, दुनिया का कुछ भी उसमें ना हो, सिर्फ उसका कलाम हो जो कि उसका हिस्सा है। और बस हमें उसका हिस्सा होना चाहिए, ना के अकीदे का हिस्सा बल्कि उसके कलाम का हिस्सा, ना के चर्च का हिस्सा बल्कि उसकी दुल्हन का हिस्सा होना चाहिए। कलीसिया को मुजरिम ठहराया गया है, हमें मालूम है वो बैरूनी तारीकी में जा रही है लेकिन दुल्हन ऊपर जा रही है। अब काश लोग थोड़ी देर के लिए जाग जाएं और जान लें कि वो अजीम चीज क्या है। ये घुमंड है जो ऐसा करता है। ये लोग हैं जो बाकी दुनिया के पीछे चलना चाहते हैं। आप ऐसा नहीं कर सकते क्योंकि आप इस दुनिया के नहीं हैं। क्या आप सोच सकते हैं ताबूत में लेटी हुई एक औरत ये जानना चाहेगी क्या उसके गीले बालों को संवारा गया है, या जो कुछ भी आप इसे कहते हैं। क्या आप सोच सकते हैं क्या कोई औरत जो ताबूत में लेटी हुई है वो जानना चाहेगी कि उसने कौन से कपड़े पहने हुए हैं, या कोई मर्द चाहेगा? वो ऐसा नहीं करेंगे। और यही वजह है कि आज हमें पड़ोसियों की नकल करने के लिए बहुत सी चीजें करनी पड़ती हैं, या किसी हॉलीवुड के सितारे की, या किसी फैशन की, या किसी और ऐसी चीज की नकल करनी पड़ती है। ऐसा इसलिए है क्योंकि हम अभी तक मसीह और उसके कलाम के लिए मरे नहीं हैं। बस चर्चिस के साथ क्या मसला है? हम तारीकी में हैं और गहरी तारीकी में हैं। लिखा है गहरी तारीकी लोगों पर छा जाएगी और गहरी तारीकी लोगों पर छाई हुई है। इस सब का क्या मतलब है? इसका ये मतलब है जब दुनिया चांद को किस चीज ने मद्दम किया, क्योंकि सूरज मौजूद था, जमीन सूरज के साए में आ गई जो खुद को जमीन पर मनक्स कर रहा था। दुनिया एक साए में चली गई है और यही मसला चर्च के साथ है, यही मसला प्रेसबिटेरियन मेथोडिस्ट पेंटिकोस्टल के साथ है, यही मसला हम सब के साथ है। दुनिया उस रोशनी को रोक देती है जिसे हमें मोनक्स करना चाहिए, ये घूमकर उसके रास्ते में आ जाती है, और जब ये एक दूसरे के पास से गुजरते हैं तो इस पर अंधेरा छा जाता है और दुनियादारी चर्च में दाखिल हो चुकी है किसी तंजीम के नाम में या किसी अकीदे के नाम में, और हम मजहबी हैं और हम ये हैं या वो हैं, लेकिन तो भी वो मसीह के जी उठने वाली ताकत का इनकार करते हैं जो उसके कलाम की शिनाख्त करती है, जिसकी नबूवत आज के जमाने के लिए की गई थी। रोशनी सिर्फ खुदा के कलाम के वसीले हो सकती है, हम ये जानते हैं। खुदा ने इब्तदा में कहा रोशनी हो जाए, और रोशनी हो गई, ये उसके कलाम की तस्दीक थी जो बोला गया था। तारीकी, मुकम्मल तारीकी छा गई, दुनिया सूरज के अक्ष के साथ यानी चांद के साथ जुड़ गई और इसे तारीख कर दिया। बिल्कुल यही कुछ कुदरती तौर पर या रूहानी तौर पर हुआ है, जैसे ये फितरी तौर पर हुआ था, इसकी पेशनगोई की गई थी और हमें बताया गया था, और बिल्कुल वैसा ही हुआ है। अब आप देख सकते हैं इसका इख्तिताम कैसे होता है। आप नौजवानों में से बहुत से लोगों को ये देखने के लिए ज्यादा बूढ़ा होने तक इंतजार नहीं करना पड़ेगा। बहरहाल अब मजीद 3 या 4 साल में ये देखेंगे। अब चांद, हम लौदीकिया के कलीसिय जमाने में हैं और इस लौदीकिया के कलीसिय जमाने में मौजूद हैं। ये बाकी तमाम कलीसिय जमानों में यानी लौदीकिया आखिरी जमाना है जो कि नीम गर्म कलीसिय जमाना है। मसीह कलीसिया से बाहर खड़ा हुआ है। कोई भी बाइबल पढ़ने वाला ये जानता है मुकाशवा 3 में वो कलीसिया से बाहर खड़ा हुआ है और दोबारा अंदर दाखिल होने की कोशिश कर रहा है और वो कभी दाखिल नहीं हो पाया। मैं जिन जिन को अजीज रखता हूँ उन सबको मलामत और तंबी करता हूँ। ये मैसेज उनको मलामत और तंबी करता है जिनको वो अजीज रखता है। अब वो खटखटा रहा है ताकि अंदर दाखिल हो सके, लेकिन तारीकी ने इसे बंद किया हुआ है। बिल्कुल ऐसा ही हुआ है, वो रोशनी जो चमक रही है बहुत जल्द बिल्कुल बंद कर दी जाएगी। ये सब मिलकर हैवान की एक मूर्त बनाएंगे और हम जानते हैं कि इसका क्या मतलब है। ये आखिरी जमाना है। खुदा ने इब्तदा में रोशनी को तारीकी से जुदा किया और खुदा दोबारा फिर ऐसा ही कर रहा है। खुदा रोशनी को अंधेरे से जुदा करता है। इब्तदा में उसने कहा रोशनी हो जाए। अब याद रखें, खुदा के कलाम के अलावा कोई रोशनी नहीं हो सकती है। यहाँ सूरज खुदा का कलाम है जिसकी तस्दीक की गई है। जमीन पर गहरा अंधेरा छाया हुआ था, जमीन पर कुर और धुंध थी, और खुदा ने कहा रोशनी हो जाए। अब क्या होता अगर रोशनी ना होती, तो फिर उसके बोलने का कोई फायदा ना होता। लेकिन उसने कहा रोशनी हो जाए, और रोशनी वजूद में आ गई और कलाम की तस्दीक हो गई कि वो दुरुस्त है, और उसी रोशनी के वसीले आज हम जी रहे हैं। और आज कलीसिया में हमारे पास जो वाहिद रोशनी है वो ये है कि खुदा इस नस्ल के सामने अपनी रोशनी की तस्दीक कर रहा है। हर नस्ल को बहुत ज्यादा आजमाया गया था, ये उनके दिनों में हुआ था, हम सब ये जानते हैं। नबी मंजर पर आए, वो खुदावंत का कलाम लेकर उनके पास आए ताकि उसे समझा जाए। अहदनामा अतीक में एक गैब दीन से मुराद वो शख्स होता था जिस पर कलाम नाजिल होता था, और वो ये कैसे जानते थे, क्योंकि वो आने वाली चीजों को देख लेते थे। खुदावंत का कलाम हर जमाने में उनके पास आया है। यीशु ने यूहन्ना से यूहन्ना के मुतल्लिक कहा वो कुछ अरसे के लिए वो एक रोशनी और चमकता हुआ उजाला था, क्यों? यसाया ने उसके पैदा होने से 712 साल पहले कहा था वो बियाबान में पुकारने वाले की आवाज है। मलाकी 3 बाब में लिखा है देखो मैं अपने आगे अपने रसूल को भेजता हूँ और वो मेरे लिए राह तैयार करेगा। देखें, वो कलाम था जो तस्दीक कर रहा था, वो कलाम था जिसने उस दिन के लिए वादा किया था, वो रोशनी था क्योंकि वो उस कलाम को पूरा कर रहा था जो उसके मुतल्लिक खुदा ने फरमाया था। और फिर जब यीशु आया, यूहन्ना ने कहा मुझे अब मद्दम पढ़ना चाहिए क्योंकि अब उसे नजर आना चाहिए, और वो रोशनी था, और तमाम जमानों में से गुजरते हुए खुदा ने इस घड़ी के बारे में कहा था। वो मजहबी रहनुमा कैसे इसे देखने में नाकाम हो गए, वो कैसे नाकाम हो गए, वो फरीसी और सदूकी इसे देखने में कैसे नाकाम हो गए। उसने कहा सहीफों में तलाश करो क्योंकि तुम समझते हो उनमें तुम्हें अबदी जिंदगी मिलती है, और ये वही है जो मेरी गवाही देते हैं। भाइयों, वो इसे देखने में कैसे नाकाम हो गए थे, ये इसलिए हुआ क्योंकि इसकी पेशनगोई की गई थी कि वो ऐसा करेंगे, और आज भी बिल्कुल वैसा ही है। गहरी तारीकी लोगों पर छाई हुई है और हम यहाँ पर हैं। खुदा ने आज अपने कलाम को जाहिर करने का फैसला किया है, और ये हमारे पास वाहिद रोशनी है اور خدا کسی کو اس کلام کو ظاہر کرنے دے گا. کوئی اسے کرنے جا رہا ہے, اس نے اس کا وعدہ کیا تھا اور وہ بالکل وہی کام کرتا ہے جو اس نے ہمیشہ سے اس کے ساتھ کیا ہے. اس نے اپنے کلام کے طریقے کو کبھی نہیں بدلا. وہ پیشن گوئی کرتا ہے کیا ہونے والا ہے, پھر وہ کسی کو بھیجتا ہے اور اس کی تصدیق کرتا ہے, اور یہ بات لاکھوں لوگوں کی سمجھ سے بالا تر ہوتی ہے, کیونکہ اس وقت تاریکی زمین پر چھائی ہوتی ہے اور لوگ روشنی کے مقابلے میں اندھیرے کو زیادہ پسند کرتے ہیں کیونکہ اندھیرے میں بہت زیادہ لذت ہے. میں نے کچھ عرصہ پہلے ایک ہالی ووڈ کا ڈراما دیکھا تھا جس میں کہا گیا تھا زندگی سورج غروب ہونے کے بعد شروع ہوتی ہے, یہی وہ وقت ہے جب موت شروع ہوتی ہے. یہ تمام نائٹ کلب ہیں جہاں وہ سمجھتے ہیں کہ وہ زندگی گزار رہے ہیں, وہ مر رہے ہیں. خدا نے ابتدا میں روشنی کو تاریکی سے جدا کیا, اس نے ہمیشہ ایسا ہی کیا ہے. وہ کیا کرتا ہے, وہ روشنی کے آنے پر اسے دبا دیتا ہے اور اندھیرے کو زمین کی دوسری جانب دھکیل دیتا ہے, اور اب بالکل ایسا ہی ہو رہا ہے. یہ دن کے طلوع ہونے سے پہلے ہوتا ہے, صبح کا ستارہ نکل آتا ہے تاکہ آنے والے دن کو سلامی پیش کرے, اور روح القدس اپنی روشنی دکھا رہا ہے. وہ وقت آنے والا ہے جب روشنی اور تاریکی کو ایک دوسرے سے جدا کیا جائے گا. چرچ اور اس کا نظام روز بروز ترقی کرتا جائے گا, اور مسیح اور اس کے روشن کلام کا وعدہ ریپچر میں چلا جائے گا. بس یہی کام ان کے کرنے کے لیے رہ گیا ہے. یہ ایک دن ہے, آج ایک نئے دن کا آغاز ہے. یہ ان لوگوں کے لیے ہے جو اس کی آمد کے منتظر ہیں. آج بہت سے اچھے مخلص لوگ ہیں, اور یہی بات ہے جو ان کے دلوں میں جل رہی ہے. بہت سے نیک اور مخلص لوگ ہیں جیسے مریم اور یوسف تھے, وہ عید منا کر واپس آ رہے تھے اور انہوں نے یسو کو کھو دیا. آج بھی بہت سے لوگ یہی کر رہے ہیں, وہ سوچتے ہیں وہ ان کے ساتھ ہے. اب میں آپ کے سامنے یہ چھوٹی سی روشنی رکھنا چاہتا ہوں تاکہ آپ کو دکھا سکوں کہ خدا کا کلام کتنا بے خطا ہے. ہم سب آج دوپہر مسیح ہوتے ہوئے ایمان رکھتے ہیں کہ یسوع مسیح خدا کا کلام تھا جو مجسم ہوا تھا. ہم ایمان رکھتے ہیں کہ وہ کنواری سے پیدا ہوا تھا, وہ خیمہ تھا جس میں قادر مطلق خدا نے یہاں زمین پر بسیرا کیا تھا. کوئی نبی نہیں, کوئی عام آدمی نہیں, بلکہ خدا خود انسانی شکل میں ظاہر ہوا تھا. وہ ایمینوئل تھا, خدا ہمارے ساتھ. ہم یہ اپنے پورے دل سے ایمان رکھتے ہیں, اور ہم دیکھتے ہیں جب مارتھا یا بلکہ مریم اور یوسف یہ سوچ رہے تھے کہ یسوع ان کے ساتھ ہے, وہ صرف یہ محسوس کر رہے تھے کہ وہ ان کے ساتھ ہے. سوچ رہے تھے سب کچھ ٹھیک ہے, وہ ہمارے ساتھ ہی ہے. لیکن افسوس کہ وہ غلطی پر تھے, وہ ساتھ نہیں تھا. آج بہت سے اچھے لوگ یہی سوچتے ہیں, وہ سوچتے ہیں وہ گھڑی کو قریب آتا ہوا دیکھ رہے ہیں, وہ جانتے ہیں کہ کچھ ہونے والا ہے. وہ کیا کرتے ہیں, وہ چرچ میں شامل ہو جاتے ہیں یہ سوچ کر کہ وہ ان کے ساتھ ہے. وہ مناد سے ہاتھ ملاتے ہیں یہ سوچ کر کہ بس اتنا ہی کافی ہے, وہ ان کے ساتھ ہے. کسی خاص طریقے سے تصدیق کرتے ہیں یا بپتسمہ لیتے ہیں اور سوچتے ہیں بس اتنا ہی کرنا ہے اور یسوع ان کے ساتھ ہے. بھائی بہن, بالکل مریم اور یوسف کی طرح جو قدیم زمانے کے مخلص لوگ تھے, پھر بھی وہ غلطی پر تھے. آپ کی زندگی ثابت کرتی ہے کہ یسوع آپ کے ساتھ ہے یا نہیں. آپ کی زندگی بتاتی ہے وہ یہاں مقیم ہے یا وہ اب بھی اپنے آسمان میں ہے یا نہیں ہے. اب جیسے بھی ہیں, جو کام میں کرتا ہوں وہ تم بھی کرو گے. آپ میں مسیح کیسے ہو سکتا ہے جبکہ آپ میں موجود روح اس کے کلام کا انکار کرتا ہے اور اس کی جگہ کوئی عقیدہ لے لیتا ہے. وہ ایسا نہیں کر سکتا. وہ اپنے کلام کو رد کر کے خود کو کیسے شکست دے سکتا ہے؟ یہ صرف اس لیے ہوتا ہے کہ کسی نے اس کی غلط تفسیر کی ہے. آپ کے پاس بائبل ہے, آپ بھی کسی اور کی طرح پڑھ سکتے ہیں. مخلص رہیں. داؤد نے کہا ہے اسے ہمیشہ اپنے سامنے رکھیں. جان لیں جب ہم اس نئے سال کا استقبال کر رہے ہیں تو ہم یہ مسیح کے جی اٹھنے کی قوت میں کر رہے ہیں. وہ ہمیشہ میرے سامنے رہتا ہے, مجھے جنبش نہ ہوگی. دیکھیں کلام کتنا بے خطا ہے. مریم اور یوسف, اب آپ سے میرے عزیز کیتھولک دوستو, کہا جاتا ہے کہ مریم خدا کی ماں تھی. مریم یسو کی ماں بھی نہیں تھی. خدا کی ماں ہونے کی تو بات ہی چھوڑ دیں, وہ کیسے ہو سکتی تھی؟ ٹھیک ہے, ایک بار بھی اس نے اسے ماں نہیں کہا, بالکل بھی نہیں. وہ ایک بار اس کے پاس آئے اور کہا آپ کی ماں اور بھائی باہر انتظار کر رہی ہیں. اس نے اپنی جماعت کی طرف دیکھا اور کہا میری ماں کون ہے, میرے بھائی کون ہے؟ اپنے شاگردوں کی طرف دیکھا اور کہا جو میرے باپ کی مرضی پوری کرتا ہے وہ میری ماں اور میرا. صلیب پر جب وہ مر رہا تھا اس نے بالکل یہی بات کہی. اس نے یوحنا سے کہا, یوحنا دیکھ یہ تیری ماں ہے اور یہ آدمی تیرا بیٹا ہے. یہ نہیں کہا ماں دیکھ یہ تیرا بیٹا ہے, ऐ औरत देख ये तेरा बेटा है। नहीं देखें, वो खुदा की माँ नहीं थी, वो महज एक रहम थी जो खुदा ने इस्तेमाल करने के लिए अदार लिया था। वो किसी दूसरी औरत से बढ़कर नहीं थी, उसे बस खुदा ने इस्तेमाल करने का इरादा किया था। वो आपके दिल के रहम को इस्तेमाल कर सकता है ताकि अपने बेटे का ऐलान करे, अगर आप उसे ऐसा करने दे। देखें, वो खुदा की माँ नहीं थी। मरियम का बीज होने के लिए भी एक एहसास होना जरूरी था। वो मरियम का बीज भी नहीं था, यही सब कुछ था। वो खालिक खुदा था। अगर पहला आदम बाप और माँ के बगैर पैदा हुआ था तो दूसरा आदम भी वैसा ही होना चाहिए था, और इससे कम कुछ भी उसे उसके बराबर नहीं बना सकता है। ये ठीक बात है, वही खुदा था। उसने एक जिस्म बनाया जिसमें वो खुद रहा। अब हम देखते हैं, देखें कैसे ये हो सकता था। अगर मरियम खुदा की माँ थी तो वहाँ उससे गलती कैसे हो गई? उसने कहा, तेरा बाप और मैं रो रो कर तेरी तलाश कर रहे थे। कुंवारी से पदेश का इनकार है। तेरा बाप यूसुफ और मैं तुझे ढूंढ रहे थे। उस 12 साल के लड़के को देखें, 12 साल बच्चे पर नजर करें। कहा, क्या आप नहीं जानते मुझे अपने बाप के बिजनेस में होना जरूर है? मैं वहाँ उन तंजीमों के साथ बहस कर रहा था। अब अगर वो यूसुफ के बिजनेस में होता तो वो बड़ाई की दुकान पर होता। यूसुफ उसका बाप नहीं था, खुदा उसका बाप था। क्या तुम नहीं जानते मुझे अपने बाप का बिजनेस करना जरूर है? 12 साल की उम्र में उन तालीम याफ्ता पादरियों के साथ वहाँ मौजूद था। वो स्कूल में एक दिन भी नहीं गया था, लेकिन फिर भी वो उसकी हिकमत से हैरान थे। और देखें, वो कलाम था। जब वो पैदा हुआ था वो कलाम था, वो अभी तक कलाम है। गौर करें, कलाम नकली आदमी को नहीं लेगा। उसने कहा, तेरा बाप और मैं रो रो कर तेरी तलाश कर रहे थे। कहा, क्या तुम नहीं जानते मुझे अपने बाप के बिजनेस में होना जरूर है? अपनी ही माँ को डांटा, क्यों? क्योंकि वो कलाम था। किसी के जहन में सवाल उठ सकता है। यहाँ मरियम को देखें, जिसने एक बार कहा था कि रूहुल कुद्दस ने उस पर साया किया था और उसने एक बेटे को जन्म दिया था, और फिर यहाँ वो यूसुफ को बाप कह रही है। कलाम बेखता है, वो नाकाम नहीं हो सकता है। क्या तुम नहीं जानते कि मुझे अपने बाप के बिजनेस में होना जरूर है? और वो बाप के काम में मसरूफ था, ना कि यूसुफ के काम में, दरवाजे बनाने और बढ़ई का काम करने में मसरूफ था। वो अपने बाप के काम में मसरूफ था। उस दौर में उनके मजहबी सियासतदानों को दुरुस्त कर रहा था। क्या तुम नहीं जानते मुझे अपने बाप के बिजनेस में होना जरूर है? जी हाँ जनाब, आज बहुत से लोग जिनका ताल्लुक बहुत उम्दा चर्चिस से है, वो काउंसिल ऑफ चर्च में शामिल हो रहे हैं। ना कि शामिल हो रहे हैं, बल्कि वो शामिल हो चुके हैं। वो समझ रहे हैं ऐसा करना बिल्कुल ठीक है। साफ साफ कहूँ भाई, हम सब इकट्ठे क्यों नहीं हो सकते हैं? क्योंकि वो बरसों से तमाम मेथोडिस्टों को बैप्टिस्ट और तमाम बैप्टिस्टों को प्रेस्बिटेरियन बनाने की कोशिश कर रहे हैं। पेंटिकोस्टल, सबको पेंटिकोस्टल बनाने की कोशिश कर रहे हैं। आप ऐसा नहीं कर सकते हैं, लेकिन आपके लिए इसका जवाब काउंसिल है। यही जवाब है जो बाइबल कहती है कि वो करेंगे, और बिल्कुल यही उन्होंने किया है। दोस्ताना चर्चेस, जी हाँ जनाब, इकट्ठे जमा होते हैं, आए हम रफाकत करते हैं। बाइबल फरमाती है, दो लोग एक साथ कैसे चल सकते हैं जब तक वो मुत्तफिक ना हो। इनमें से कुछ कुंवारी से वलादत का इनकार करते हैं। प्रोटेस्टेंट गिरजाघरों का 80% हिस्सा कुंवारी से वलादत का इनकार करता है, और वो रूहुल कुद्दस के बपतिस्मे का इनकार करते हैं। वो उसकी आमद के निशानों और जीतने की कुव्वत का इनकार करते हैं। वो इनकार करते हैं कि वो कल आज बल्कि अब तक यकसा है। आप ये कैसे कर सकते हैं जबकि खुदा ने दुनिया में ये सारी अफरा तफरी आने दी क्योंकि एक औरत ने एक दिन उसके कलाम के एक छोटे से हिस्से पर शक किया था। शैतान ने एक चीज के अलावा बाकी सब कुछ सच बताया, और यही वो चीज थी जिसने सारी मुसीबतें पैदा की। अब अगर ये सारा दिल का दर्द और गम आपको देखना पड़ता है तो इसका सबब ये है कि एक छोटे से हिस्से पर शक किया गया था। क्या आपको लगता है कि शक का एक छोटा सा हिस्सा हमें कभी अंदर ले जा पाएगा? यही वजह है कि यीशु एक पाक दामन कुंवारी के लिए आ रहा है जो रूहुल कुद्दस से भरी हुई है और दुनिया की नहीं बल्कि खुदा की कुव्वत से मामूर है। हो ये जानकर कितना अच्छा महसूस होता है कि इस ग्रुप में शामिल होने का इम्कान है। आप ये कैसे कर पाएंगे? आप तंजीम में शामिल होकर कभी भी ये नहीं कर पाएंगे। आप ये तब करेंगे जब आपको रूहुल कुद्दस के वसीले यीशु मसीह के आसमानी बदन में बपतिस्मा दिया जाएगा। फिर उसके साथ जीतना होगा और मौत और गुनाह से आजादी मिल जाएगी। बस यही एक तरीका है। तारीकी बड़ी तंजीमें और आदमियों का एक बड़ा ग्रुप इकट्ठा हो रहा है और इसके मुतालिक अपने ख्याल कायम कर रही है, और ये बात आपको बिल्कुल वैसे ही एक उलझन में वापस ले जाएगी जैसे इब्तदा में ले गई थी। इस सूरत में बिल्कुल भी कोई उम्मीद नहीं है। आप बस खो चुके हैं और वो सब इस दोस्ताना चर्चिस के मुतालिक बहुत पुरजोश नजर आते हैं। आपको लगता है खुदा इनके साथ होगा। खैर, हजार साल दौर शुरू होने जा रहा है जबकि तमाम कौंसिल के अराकीन इकट्ठे होने जा रहे हैं और तमाम फिरकों के दरमियान इत्तेहाद हो रहा है और वगैरह वगैरह, और वो जुड़ रही हैं। वो किस लिए जुड़ रही हैं? ताकि हैवान के लिए एक मूर्त बनाए, एक ऐसी ताकत बनाए जहां तमाम गैर तंजीमी लोग और बाकी ऐसे लोग अगर उनके साथ नहीं जुड़ेंगे तो उन्हें बाहर निकाल दिया जाएगा। बस देखते रहें और गौर करें क्या होता है। मैंने इसे यहाँ लिखा हुआ है बिल्कुल उसी दिन जब हम खुदावन ने मुझे 1933 में ये दिखाया था और ये बिल्कुल वैसे ही है जैसे उसने कहा था। बस ये उसी तरह आ रहा है। कैसे पोप रोम को छोड़ेगा और वगैरह वगैरह। अब वो अच्छे लोग हैं लेकिन गलत फहमी का शिकार है। यूसुफ और मरियम अच्छे लोग थे लेकिन वाकई गलत फहमी का शिकार थे। लेकिन ये क्या था? खुदा ने एक 12 साल लड़के को इस्तेमाल किया ताकि ये दिखा सके कि उसका कलाम बिल्कुल खालिस है। दरअसल ये क्या था जो उसने सबसे पहले कहा था? वो कमारी से पैदा हुआ था और वही वो था। वो सोच रहे थे वो उनके साथ है जबकि वो चर्चिज में और बाकी चीजों में शामिल थे, लेकिन ऐसा नहीं था। अब चुने हुओं के लिए अब यही तारीकी है और मैं इस पर एक और घंटा बात कर सकता हूँ, लेकिन चुने हुओं, कीमती और बुलाए हुओं के लिए मैं कहता हूँ खुदा के मुकद्दसों इस आने वाले साल में शालूम हो, खुदा की सलामती हो। वो घड़ी आ पहुंची है। काश मैं उन दिनों में वहाँ वापस जा सकता जब दुनिया की पैदाइश हुई थी और नीचे देखता और पूरी बात देख लेता और बाप मुझसे पूछता तू किस दिन में रहना चाहेगा, तो मैं कहता ठीक अभी, यही वो घड़ी है। ये वो अजीम तरीन घड़ी है जिसमें कलीसिया ने कदम रखा हुआ है। दुल्हा की आमद से पहले की घड़ी है। ओ जिंदा खुदा की हकीकी कलीसिया को आग से भरा होना चाहिए। इन्हें अंजील की रोशनी से जलना चाहिए क्योंकि इनके दरमियान शनाख्त हो रही है। उठो और चमको क्योंकि नूर तुम्हारे पास आया है। आज के जमाने का नूर यशाया अपने जमाने का नूर था। नूह अपने जमाने का नूर था। क्यों? क्योंकि उसने कलाम को जाहिर किया था और अंजील आज के दिन के लिए बाइबल के अल्फाज इस दिन का नूर है। ये कैसा शानदार वक्त है जिसमें हम जी रहे हैं। अब सुबह खैर का मतलब है सलामती हो। अंधेरा छा रहा है, ये किस लिए जमा हो रहा है? रोशनी दिखाने के लिए। यशाया 61 उठ और मुनव्वर हो क्योंकि तेरा नूर आ गया है। यही वजह है कि मैं कह सकता हूँ शालोम, नूर आपके पास आ चुका है। खुदा की सलामती चुनी हुई खातून के लिए है, चुनी हुई औरत के लिए है, वो जिन्हें खुदा ने बनाए आलम से पेशतर चुना था, उन्हें इसके लिए बुलाया है और मुकरर भी किया है। बाकी लोग इसे कभी भी देख नहीं पाएंगे, वो इसके बारे में कुछ भी नहीं जानेंगे। बाइबल ऐसा फरमाती है और यीशु ने कहा कोई शख्स मेरे पास नहीं आ सकता जब तक मेरा बाप पहले उसे खींच न ले और वो सब जो बाप ने मुझे दिया है मेरे पास आ जाएगा। यही है। यहूदा वहाँ खड़ा हुआ था, रोशनी वहाँ चमक रही थी लेकिन उसके दिल में अंधेरे का एक बीज था। जब मुकाबले का वक्त आया तो अंधेरा जाहिर हो गया। यहाँ एक छोटी सी खातून थी जो जाहिरी तौर पर मुकम्मल तौर से स्याह थी लेकिन उसके दिल के अंदर पहले से मुकर्रर शुदा एक बीज था और जब रोशनी आई उसने अंधेरे को मुंतशिर कर दिया और वो बीज जाहिर हो गया। हम जानते हैं मसीहा आने वाला है और जब वो आएगा तो वो हमें ये बातें बताएगा। यीशु ने कहा मैं वही हूँ, लेकिन यहूदा ने उस पर शक किया और सोच रहा था कि वो रोशनी में चल रहा है। देखें, यहाँ बाहर की रोशनी कोई अहमियत नहीं रखती, ये अंदर की रोशनी है जो अहमियत रखती है। यहाँ की रोशनी चलने फिरने और रफाकत रखने और बाकी चीजों के लिए है, लेकिन जब खुदा की हकीकी कुव्वत नमूदार होती है तो वो मुर्दा बीज की तरफ वापस नहीं आएगी, वो किसी भी तंजीम से टकरा कर वापिस पलट जाएगी। लेकिन जब वो यहाँ वापिस आती है एक हकीकी पहले से मुकर्रर शुदा बीज के ऊपर आती है। जब वो नूर यहाँ नाजिल होता है तो वो आपसे तमाम तारीकी को दूर कर देता है और आपको मसीह की रफाकत में ले आता है। वो वही था जिसने बनाए आलम से पेशतर आपको जिंदगी दी थी, वरना आप ये कभी नहीं देख पाएंगे जो खुदा ने फरमाया है। अब पहले से मुकर्रर शुदा बीज को शालोम आमीन खुदा की सलामती आप पर ठहरी रहे क्योंकि हम इख्तिताम के करीब हैं। हम बिल्कुल इख्तिताम के करीब हैं। हम कुछ देर के लिए इस ग्रुप के मुतालिक बात करने जा रहे हैं। शालोम, खुदा का नूर आ गया है, कलाम नूर दोबारा साबित हुआ है ताकि आप इस दिन के लिए खुदा के माहूदा जहूर को देख सकें। तुम किताबे मुकद्दस में ढूंढते हो क्योंकि समझते हो कि उसमें हमेशा की जिंदगी तुम्हें मिलती है और वो इस दिन की गवाही देता है जिसमें हम जी रहे हैं। इस दिन का नूर क्या है? इस दिन के लिए बाइबल ने क्या वादा किया है। देखें, ये कौन सी घड़ी है। हैरत की बात नहीं कि यीशु ने उन्हें यूहन्ना पर ईमान ना लाने पर मलामत की। वो नूर था, क्योंकि नबी ने कहा था वो आएगा और वो वहाँ मौजूद था। जाहिर शुदा नूर था। उन्होंने उसे नहीं देखा, उन्होंने उसे नहीं समझा। उन्होंने सोचा कि वो मसीहा था और उन्होंने कुछ और ही सोचा था और कुछ मुख्तलिफ सोचा था। वो उसे देखने में नाकाम हो गए। यीशु मंजर पर आया। देखें, दो नूर एक ही वक्त पर नहीं चमक सकते हैं। चर्च की रोशनी और खुदा की रोशनी एक ही वक्त में नहीं चमक सकती है। ये खुदा की रोशनी है जो चर्च की रोशनी को बाहर निकाल रही है, और यही कुछ आज हो रहा है। खुदा इस घड़ी के वादा शुदा कलाम की रोशनी के वसीले चर्च इज्म से अलग कर रहा है, जिसमें हम जिंदगी गुजार रहे हैं। ये सच्चाई है दोस्त। आप शायद इस पर यकीन ना करें, लेकिन बस इंतजार करें और खुद देखें क्या ये सच है या नहीं। देर ना करें, जब तक मौका है अभी अंदर दाखिल हो जाएं। कलाम जब साबित हो जाता है तो नूर है। जब तक वो कलाम जिसका इस दिन के लिए वादा किया गया था साबित नहीं होता, तब तक वो नूर नहीं है, वो नहीं हो सकता। अगर खुदा कहता है रोशनी हो जाए और सूरज वजूद में नहीं आता है, तो फिर रोशनी का कोई निशान नहीं है। लेकिन जब खुदा ने कहा रोशनी हो जाए तो रोशनी हो गई। जब खुदा ने वादा किया कि मसीहा आएगा तो मसीहा आ गया। फिर उसका कलाम पूरा हुआ और वो जमाने का नूर बन गया। जब उसने नूर से वादा किया और उसने बाकियों से वादा किया और वगैरह वगैरह, तो वो उस जमाने के नूर थे। और आज के जमाने के लिए एक नूर है और वो यीशु मसीह के जी उठने की कुव्वत है। उसका कलाम है जिसका इस जमाने के लिए वादा किया गया था। जो काम मैं करता हूँ वो तुम भी करोगे, बल्कि इससे भी बड़े काम करोगे, क्योंकि मैं बाप के पास जाता हूँ। उससे बड़े काम, उससे बड़ी चीजें जो उसने की थी। क्या आप इस पर ईमान रखते हैं? मैं इस पर ईमान रखता हूँ। ये फ्रोतनी है। ऐसा लगता है कि ये लोगों की समझ से बालातर है। देखें, जब वो जमीन पर था, आप बड़े काम कैसे कर सकते हैं? मैंने इसका तर्जमा कई बार किया है ज्यादा, लेकिन ये एक ही चीज है, बड़े। उसने यूहन्ना 14:12 में कहा है, तुम इससे भी बढ़कर काम करोगे। क्या आपने गौर किया है, जब उसने पानी को मैं में तब्दील करना था, तो उसने पहले पानी लिया, एक पहले से मौजूद मादा लिया और उसे मैं में तब्दील कर दिया। जब उसने 5,000 लोगों को खाना खिलाया, तो उसने एक मछली ली जो कभी पानी में तैरती थी, उसे तोड़ा और लोगों में तकसीम कर दिया और तखलीक को कई गुना बढ़ा दिया। उसने वो रोटी ली जो कभी गंदम थी और उसे पकाकर रोटी बनाया गया था, उसे तोड़ा और बांट दिया, उसे लोगों में तकसीम कर दिया गया और वो दोबारा वजूद में आ गई, तखलीक को बढ़ा दिया गया। लेकिन आखिरी जमाने में जहाँ तखलीक का कोई निशान तक नहीं था, वो बोलकर उसे वजूद में ले आता है। देखें, ये बात जाहिर करती है कि ये वही खुदा है जो इब्तदा में था। वो गलेरियां तखलीक कर सकता है, वो जो चाहे पैदा कर सकता है, क्योंकि वो खुदा है। तुम इनसे बड़े काम करोगे, क्योंकि मैं बाप के पास जाता हूँ। कलाम बेखता है और इसे पूरा होना है और इसे साबित होना है। तुम इनसे बड़े काम करोगे, बढ़ाना नहीं है बल्कि बोलकर वजूद में ले आओगे। अब कलाम पर गौर करें, जबकि उसने वादा किया है, और फिर हम कहाँ पहुँच गए हैं, हम किस जमाने में रह रहे हैं, ये कौन सी घड़ी है। ये खुदा के कलाम का जहूर है, ये हर घड़ी में होता है। आपके पास 7 कलीसिय जमानों का पैगाम है। उनमें से हर एक हैवान पर गौर करें जो बाहर निकला था, और उनके पीछे आने वाले हैवान पर भी गौर करें। पूरी तवज्जो दें। क्या ये असलाकारों के जमाने में से होते हुए नहीं आए हैं? और हर दौर में बिल्कुल वैसा ही हुआ जैसा होना चाहिए था, बिल्कुल वैसा ही हुआ जैसा कलाम ने कहा था। और आज रूहुल कुद्दस बिल्कुल वैसे ही जाहिर होगा जैसे बाइबल ने कहा था कि वो होगा। हम आसमान और जमीन पर साया और बाकी तमाम चीजें दिख रही हैं, और कौंसल और दीगर चीजें तैयार हो रही हैं, और हम देखते हैं कि इन सब के बीच में यीशु मसीह की जलाली अंजील मौजूद है, जिसका इस जमाने के लिए वादा किया गया था। वो खुद को जाहिर कर रहा है। हम एक शानदार दौर में जी रहे हैं। सलाम हो तुम पर जिनके दिल में कलाम इलाही बसा हुआ है, जो दुनिया की बुनियाद से पहले चुने गए थे ताकि इस जमाने के कलाम को सुन सके। अगर ऐसा नहीं है, तो फिर आने वाला साल आपके लिए एक बुरा साल है। अगर आप हैं, तो आपके लिए एक अजीम दुनिया आगे है, या एक अजीम दिन है, एक अजीम नया साल आ रहा है। नया सफा पलटने के लिए नहीं। बहुत से लोग नए साल में नया सफा पलटने की कोशिश करते हैं, लेकिन अगले ही दिन उसे वापिस पलटा देते हैं। ये एक छोटी सी कहानी की तरह है जो मैं किसी दिन पढ़ रहा था। एक औरत ने अपने शोर को आवाज दी, जो सुबह सवेरे उठकर बाहर गया था और सुबह का अखबार लेकर आया था, और वो सुबह का अखबार पढ़ रहा था। उसने कहा, बीवी ने कहा, क्या खबरों में कुछ नया है? उसने कहा, नहीं, बस वही पुरानी बातें हैं, बस लोग बदल गए हैं। आज भी तकरीबन यही सूरत हाल है, वही बात है। हमने एक नई तंजीम बना ली है, लेकिन वही पुरानी तालीम है, बस इसे इधर उधर गमा देते हैं। कोई किसी का छोटा सा पहलू ले लेता है और उसे इधर उधर घुमा देता है। ये एक नया दिन है, हालेलुया। ये वो दिन है जिसमें हमें यीशु मसीह की कुव्वत में उठकर चमकना चाहिए। गहरी तारीकी जमीन पर छा रही है, हमारे लिए एक नया दिन होना चाहिए। जी हाँ, बेशक बिल्कुल वैसे ही जैसे वो करता है। लेकिन उसके कलाम की तरफ रुजू करें और देखें इस दिन के लिए क्या वादा किया गया है, और आप जान जाएंगे कि आप दिन की रोशनी में रह रहे हैं या नहीं। कैलेंडर बदलने से वक्त नहीं बदलता, ये सिर्फ कैलेंडर को बदला गया है। अब गौर से सुने, दाऊद ने जैसा किया वैसा ही करें। अपना मुस्तकबिल उसके हाथ में रख दें। कैसे भाई ब्रैनम, मैं कैसे जान सकता हूँ मुझे क्या करना चाहिए? अपना मुस्तकबिल उसके हाथ में रख दें। कोई फर्क नहीं पड़ता क्या आता और क्या जाता है, उस पर भरोसा रखें। वो कलाम है, अब जान लें। दाऊद ने कहा, उसका वक्त मेरे हाथ में है। हर वक्त उस पर भरोसा रखें, हमेशा उस पर भरोसा करें। वो जानता था कि मुस्तकबिल किसके पास है, दाऊद जानता था, इसलिए उसने ये कहा है। मुस्तकबिल सिर्फ एक के पास है, वो खुदा है। वो मुस्तकबिल को संभाले हुए है, उसे खुद को संभालने दें। ठीक है, कुछ लोग कहते हैं, लेकिन भाई ब्रैनम मैंने कोशिश की है और बहुत कोशिश की है, लेकिन एक मिनट रुकें। सबर एक नेमत है, सबर रूहुल कुद्दस की नेमत है, लेकिन खुदावंत का इंतजार करने वाले असर नो जोर हासिल करेंगे। आप कहते हैं मैं अब मजीद कैसे इंतजार कर सकता हूँ? बस इंतजार करते रहें। जब आप वो सब कर लेते हैं जो आप डटे रहने के लिए कर सकते हैं, तो फिर डटे रहें। देखें, बस डटे रहें। मैं ये कैसे करूँगा? डटे रहें। उसने कहा, ये सच है और यही सच्चाई है। उसने कहा, ये पूरा होगा। कैसे? मुझे नहीं मालूम, लेकिन ये पूरा होगा। उसने कहा है, उसने वादा किया है। अगर उसने वादा किया है तो ये जरूर पूरा होगा। बस यही है, ये बेकार नहीं जा सकता। और अब बस याद रखें, खुदा ने आने वाले निजात दहिंदा के अपने वादे को पूरा करने में हजारों साल लगाए थे। खुदा ने अपना वादा पूरा करने के लिए 4000 साल लगाए थे, लेकिन वो इब्तदा ही से जानता था कि ये कब होगा। वो जानता था, किसी और को इल्म नहीं था। उसने कहा था ऐसा होगा, और जब ये पूरा हुआ तो लोग इतने गुमराही में थे कि उन्हें मालूम ही नहीं था इसे कैसे कबूल करना है। क्या वही बात दोबारा नहीं दोहराई गई है? ऐसा हमेशा होता है, कभी नाकाम नहीं होता, हमेशा दोनों अतराफ से होता है। इन सालों के दौरान उसने क्या किया? उसने अपनी आमद की मुख्तलिफ अलामात दिखाई। उसने ये यूसुफ में दिखाया। अगर आप यूसुफ की जिंदगी को देखें, तो उसके भाइयों ने उससे नफरत की और उसके वालिद ने उससे मोहब्बत की। क्यों? क्योंकि वो रूहानी था, क्योंकि उसने रोयाएं देखी थी। उनमें से बाकियों ने रोयाएं नहीं देखी थी, वो बुजुर्ग थे, लेकिन उन्होंने ख्वाब नहीं देखे थे, ख्वाबों की ताबीर नहीं की थी, लेकिन वो उससे हसद करते थे और उसे तकरीबन 30 चांदी के सिक्कों में बेच दिया था। वो कुएं से निकाला गया था, वहाँ उसे मार दिया गया था और फिर फराउन के दैने हाथ बिठा दिया गया। और जब वो तख्त से नीचे उतरकर आता था तो नरसिंगा फूंका जाता था, घुटने टेक लो, यूसुफ आ रहा है। बिल्कुल ऐसा ही यीशु ने किया। वो खुदा के दैने हाथ बैठा हुआ है और जब वो तख्त छोड़ेगा तो नरसिंगा फूंका जाएगा और हर एक घुटना झुक जाएगा और खुदा के बेटे यीशु मसीह का इकरार करेगा। ये सच है। उसने इसे दाऊद की मिसालों में दिखाया, जब वो बतौरे एक रद्द किया हुआ बादशाह यरूशलम को देख रहा था और रो रहा था, कितनी बार मैंने चाहा, जैसे मुर्गी अपने बच्चों को अपने परों के नीचे छुपा लेती है, तुम्हें छुपा लूं, मगर तुमने ना चाहा। हर जमाने में वो मुख्तलिफ नमूनों में ये दिखाता रहा, ये जानते हुए कि एक दिन आखिरी नमूना पूरा हो जाएगा और उसके मौजूदा मसीहा का मुकम्मल ज़हूर हो जाएगा। और जब मुकम्मल वादा आया, हालांकि उसने इसके बारे में लिखा हुआ था, दिन ब दिन, साल ब साल उसने इसके बारे में लिखा हुआ था, और जब हकीकी चीज सामने आई तो उन्होंने उसका यकीन ना किया। उसने भी यही काम किया, नमूने में किया और कलीसिया जमानों में इसे दिखाया और वगैरह वगैरह। और जिस घड़ी में हम जिंदगी गुजार रहे हैं, लोग गहरी तारीकी में हैं, ऐसा लगता है कि वो इसे समझ नहीं सकते हैं। कितनी अफसोस की बात है। यहाँ इस नौजवान को देखें, ठीक बड़ा मजबूत जिस्म वाला है, और उसके बाल देखें, इसने ऐसे गुंगरियाले बाल बनाए हुए हैं जैसे औरतें बनाती हैं, और तंग लिबास पहना हुआ है और एक लंबा स्वेटर लटक रहा है और जामनी रंग के जूते पहने हुए हैं। मर्द हो मेरे खुदाया, ऐसे आदमी को मर्द कहना अफसोस की बात है, ऐसे आदमी को मर्द कहना अजीब बात है। ये सच है, किसी औरत को देखें जिसे नफीस और हसीन समझा जाता है, लेकिन वो मर्दों की पतलून पहनकर बाहर निकल आती है और कटे हुए बालों के साथ उसके मुंह में सिगरेट होती है। ऐसी औरत को एक औरत कहना अफसोस की बात है। यीशु ने मरियम को औरत कहा, इसे तो एक औरत भी नहीं कहना चाहिए, बस एक नारी है। उस घड़ी पर गौर करें, क्यों? क्योंकि कभी कभी लोग दावा करते हैं और समझते हैं कि वो सच्चे हैं, लेकिन उनके अंदर गहरी तारीकी मौजूद है। बाइबल फरमाती है कि वो ऐसे ही होंगे। यशायाह 6 पढ़ें और मालूम करें कि क्या आखिरी अयाम में औरतों को ऐसा नहीं करना था। बिल्कुल वैसा ही हो रहा है जैसा बाइबल ने कहा था कि लोग करेंगे। ये खुदा का कलाम है। यर्मिया और मुख्तलिफ लोगों ने इस घड़ी का जिक्र किया है जिसमें अब हम जिंदगी गुजार रहे हैं, क्योंकि उन्होंने इब्तदा ही से अंजाम को देख लिया था। इसलिए हम इन चीजों को देख रहे हैं और लोगों पर गहरी तारीकी छाई हुई है। जी हाँ, खुदा ने हजारों साल लगाए बस नमूने और बाकी चीजें दिखाने में, और आखिरकार जब वो आया तो उन्होंने उसे ना पहचाना। हालांकि उसे यूसुफ और दाऊद और एलिया में दिखाया गया था और वहाँ से लेकर आखिर तक ऐसा हुआ, वो इनके जरिए दिखाया गया था, और फिर भी हम ये नहीं समझ सकते कि उन्होंने इसे क्यों नहीं देखा था। और ये बात ठीक कलाम में लिखी हुई थी, वो यहूदिया के बैतलहम में पैदा होगा। हम इस बात को कलाम में देखते हैं, कैसे उसे एक कुंवारी में से पैदा होना था। देखो, एक कुंवारी हमला होगी और बच्चा जनेगी और वो उसका नाम इमैनुअल रखेंगे। उन्होंने उसे क्यों मसलूब किया था? क्योंकि उसने खुद को खुदा बनाया था, हालांकि वो खुदा था। यकीनन वो खुद कहते हैं, उसने कहा है कि वो खुद खुदा है, खुदा के बराबर है, और कहता है मैं खुदा का बेटा हूँ। क्यों? क्योंकि वो था। बाइबल फरमाती है कि उसका नाम अजीब मशीर, खुदा कादर, अब्दियत का बाप, सलामती का शहजादा होगा। यही तो है जो वो था। वो इसे क्यों नहीं समझ पाए थे? हैरत की बात नहीं कि उसने कहा तुम्हें कलाम में तलाश करना चाहिए? उन्होंने कहा हम मूसा के शागिर्द हैं। कहा अगर तुम मूसा के शागिर्द होते तो मुझे जानते, मूसा ने मेरे बारे में लिखा था, और वो ये नहीं जानते थे। और लोगों पर एक बार फिर वो वक्त आ गया है जब ये लोग अपने अकायद और बाकी चीजों के साथ कायम रहेंगे, प्यारे यीशु के साथ कायम रहने की बजाय। ये सच है, ऐसी बड़ी बड़ी चीजें सामने आ रही हैं और इन्हें मस्जिद तारीकी और मस्जिद तारीकी में ले जा रही हैं, और खुदा अपने कलाम के वसीले आसमान में निशानों और अजीब कामों के जरिए ऐलान कर रहा है और जाहिर कर रहा है, और वो बातें बता रहा है जो बिल्कुल वक्त पर और मिनट पर होने वाली हैं, वो होंगी। और फिर भी वो मुसलसल उसी राह पर चलते रहते हैं। ऐसा लगता है कि वो खुद को रोक नहीं सकते हैं। अच्छे लोग, जी हाँ जनाब, अब भी वैसा ही कर रहे हैं जैसा उन्होंने उस वक्त किया था। हम वक्त की मखलूक हैं, खुदा अब्दियत की मखलूक है। खुदा एक अब्दी मखलूक है, उसका कभी आगाज नहीं हुआ और उसका कभी इख्तिताम नहीं होगा। तो फिर क्यों ना अपने आप को उसके सुपुर्द कर दें, ऊपर देखें और खुदा के कलाम की रोशनी के साथ आज खुशी से मुनव्वर हो जाएं। दोस्तों, लोग इसे क्यों नहीं देखते हैं? सुने, मैं आपका भाई हूँ, मैं आपसे प्यार करता हूँ। क्या मेरे लिए ये आसान ना होता कि मैं बस बर्दाश्त कर लेता और फिर आगे बढ़कर कह देता, ओ ठीक है, मैं इस पर समझौता कर लूँगा, मैं कर लूँगा, मैं ऐसा नहीं बना हूँ। नहीं जनाब, जब ये कलाम है तो ये कलाम है। खुदा सच्चाई पर कायम रहने में हमारी मदद करे। जी हाँ जनाब, यही ठीक बात है। यकीनन इस पर आपको दाद मिलेगी, लेकिन मैं उस दिन वहाँ खड़ा होकर क्या करूँगा जब वो सूखी उंगलियाँ मेरे चेहरे की तरफ इशारा करके कहेंगी तुझे बेहतर मालूम था लेकिन तूने हमें नहीं बताया था। हो नहीं, मैं पालूस की मानिक बन जाऊंगा। मैं खुदा की सारी मर्जी तुमसे पूरे तौर पर बयान करने में ना झिझका। किसी इंसान का खून मेरे ऊपर नहीं है, उसे वहाँ जाने दो जहाँ उसे होना है। यही सच है, खुदा जानता है और वो इसकी तस्दीक करता है और कहता है यही सच्चाई है। किस तरफ रुजू करें? क्या भाई ब्रहनम की तरफ? आपके लिए ऐसा करना हमाकत की बात होगी। मसीह की तरफ रुजू करें क्योंकि वो कलाम है। मसीह की तरफ रुजू करें, अकीदों से दूर हो जाएं और वापस अंदर आ जाएं। मुझे नहीं परवाह, हो सकता है आपने अपने अकीदों को 500 साल पहले शुरू किया हो, ऐसा हो सकता है, लेकिन ये चीज खुदा के लिए कोई मायने नहीं रखती है। सदूकियों और फरीसियों ने आपके आने से बहुत पहले आगाज किया था और उन्हें मुजरम ठहराया गया था। हो आप रूहुल कुद्दस के सबूत को अपने ईमानों के निशानों पर रखने की कोशिश करते हैं। मैं रूहुल कुद्दस के जहूर पर ईमान रखता हूँ। ये क्या करता है? पेंटिकोस्टल कहते हैं غیر زبانوں میں بات کرنا روح القدس کا ابتدائی ثبوت ہے. میں نے جادوگرنیوں اور جادوگروں کو غیر زبانیں بولتے دیکھا ہے. میں نے انہیں غیر زبانوں میں بولتے اور انسانی کھوپڑی سے خون پیتے دیکھا ہے, اور وہ نبوت بھی کرتے ہیں, توبہ کا انکار کرتے ہیں کہ خدا جیسی کوئی چیز ہے. میں جادوگرنیوں کے کیمپوں میں گیا ہوں جہاں وہ میز پر ایک پینسل رکھ کر اسے اوپر نیچے اچھالتے ہیں اور نامعلوم زبانوں میں لکھ کر ترجمہ کرتے ہیں. یہ بالکل درست ہے. جن کے پاس کہنے کو کچھ بھی نہیں, پھر بھی میں یقین رکھتا ہوں کہ خدا اپنے لوگوں کے ذریعے غیر زبانوں میں بات کرتا ہے. لیکن آپ اس بات پر بہت زیادہ زور دیتے ہیں, ترجمہ کیوں ہونا چاہیے, اس کے پاس چرچ کے لیے پیغام کیوں ہونا چاہیے. پھر آپ دوسرے لوگ, آپ کہتے ہیں روح کے پھل ہیں, ہم ان سے پہچانتے ہیں, محبت ہے, خوشی ہے, اور یہی ثبوت ہے. کیا ایسا ہے؟ اگر ایسا ہے تو کرسچن سینس والے آپ سب سے آگے ہیں. وہ سب آپ تمام پینتی کوسٹلوں, میتھوڈسٹوں اور بیپٹسٹوں سے زیادہ ان چیزوں پر عمل کرتے ہیں. دیکھتے ہیں کیا ہوتا ہے. میں آپ کو روح کے پھل دکھاتا ہوں اور دیکھتا ہوں کیا آپ اس بات کے لیے مزید آگے بڑھ سکتے ہیں. آئیں یسوع کو لیتے ہیں. خدا مجھے ان الفاظ کے لیے معاف کرے جو میں کہنے جا رہا ہوں. میں ایک منٹ کے لیے اس کے خلاف ہونے جا رہا ہوں تاکہ آپ کو کچھ دکھا سکوں. یہاں انسانوں کی یہ کونسل لیں, اور آج دوپہر یہاں انسانوں کی اس کونسل کو بھی. میں کہوں گا, صاحبو یہاں آس پاس ایک نوجوان آدمی ہے جس کا نام یسوع ناصری ہے, اسے کوئی تعلق نہ رکھنا. پہلا کون تھا؟ ہماری بائبل ہمیں کیا سکھاتی ہے؟ خدا محبت ہے. جب آپ پیدا ہوئے تو آپ کے ساتھ سب سے پہلے کون تھا؟ آپ کا اچھا برا کاہن. یہ بالکل درست ہے. کون آپ کے پاس اس وقت آیا جب آپ کو ضرورت تھی, آپ کے پاس پیسے نہیں تھے اور آپ کو کچھ قرض دیا؟ آپ کا مہربان بوڑھا کاہن, یقیناً جس نے آپ کے کندھے پر اور ماں کے کندھے پر ہاتھ رکھا جب آپ جدا ہونے والے تھے اور آپ کو خدا سے واپس ملانے کی دعا کی تھی. آپ کا مہربان بوڑھا کاہن وہ کون تھا جس نے آپ اور آپ کے پڑوسی کے جھگڑے کے دوران آپ کا ساتھ دیا اور آپ کو دوبارہ بھائی چارے میں جوڑ دیا؟ آپ کا مہربان بوڑھا کاہن, یہ ٹھیک بات ہے. وہ کون ہے جو آپ کے لیے آخری الفاظ کہنے جا رہا ہے؟ وہ کون ہے جب انہوں نے آپ کو چھوڑ دیا اور سڑنے دیا, لیکن آپ کا مہربان بزرگ کاہن آپ کے پاس آیا اور آپ کو برکت دی اور آپ کے ساتھ خدا کے کلام کو بانٹا؟ یہ آپ کا مہربان بوڑھا کاہن ہے. اس لڑکے کے متعلق کیا خیال ہے جسے ناصرت کا یسوع کہا جاتا ہے؟ پھر دیکھیں وہ کس سکول سے آیا ہے. آپ کے مہربان بوڑھے کاہن نے اپنی ساری زندگی قربانی دی ہے. اس کا دادا ایک کاہن تھا, اس کا پر دادا ایک کاہن تھا. اس نے اپنی پوری زندگی تنظیم میں وقف کر دی ہے. وہ کلام الہی سے تربیت یافتا ہے. اسے معلوم ہے کہ وہ کس بارے میں بات کر رہا ہے. اب ہم روح کے پھلوں کی بات کر رہے ہیں. مہربانی, محبت, خوشی, امن, اطمینان, سمجھ, تحمل. دیکھیں یہ روح کے پھل ہیں. اس یسوع کے متعلق کیا خیال ہے؟ وہ کہاں سے آیا ہے؟ ہمارے پاس کوئی ثبوت نہیں ہے کہ وہ کس سکول سے آیا ہے. وہ تو ان سکولوں کو تباہ کرنے کی کوشش کر رہا ہے جنہیں ہم نے تعمیر کیا ہے. یہاں روح کا پھل نظر نہیں آ رہا ہے. کیا آ رہا ہے؟ اس نے وہاں کیا کیا جہاں وہ بیچارے تاجر لوگ موجود تھے اور کاروباری افراد موجود تھے؟ وہ بیڑے نہیں پالتے تھے, اس لیے انہوں نے وہاں ایک چھوٹا سا باڑا بنایا ہوا تھا تاکہ کوئی بھی آدمی بیڑ اندر لے جا سکے. روح بیچارہ تاجر وہ ایک بیڑ قربان کرنا چاہتا ہے کیونکہ یہ خدا کی مانگ ہے. وہ بیڑوں کو کاروباری شخص کے سامنے بیچنے کے لیے لاتا ہے تاکہ وہ اپنی روح کے لیے قربانی دے سکے. اس ناصرت کے یسوع نے کیا کیا؟ اس نے ان کی میزوں کو الٹ دیا, کچھ چمڑا لیا اور اس سے ایک کوڑا بنا لیا اور وہاں سے کاہنوں کو مار مار کر بگا دیا, اور تمہارے بوڑھے کاہن کو کہا جاڑیوں میں چھپا ہوا سانپ ہے, ریاکار ہے. اب آپ اسے روح کا پھل کہتے ہیں؟ بالکل بھی نہیں. پھر آپ کا روح کا پھل کہاں نظر آتا ہے؟ اس سے زیادہ نہیں ہے جیسے آپ ہمدردی کے متعلق سوچتے ہیں. اور وہ بہت سے لوگوں کے درمیان سے گزر رہا تھا. وہاں بہت سارے لوگ پڑے ہوئے تھے. وہاں اندھے, لنگڑے, بیمار, معذور, ضعیف, مصیبت زدہ لوگ تھے, لیکن اس نے ان میں سے کسی کو شفا نہیں دی. لیکن وہ ہمدردی سے بھرا ہوا تھا. جسمانی دماغ والے لوگ اسے کبھی نہیں جان پائیں گے. سیمینریاں یہ نہیں سکھاتی ہیں. یہ ایک مکاشفہ ہے. یقیناً روح کا پھل یہاں ختم ہو جاتا ہے. کیا ایسا نہیں ہے؟ ان کاہنوں کے پاس 10 گنا زیادہ روح کا پھل تھا. آپ کیسے جانیں گے کیا درست ہے؟ خدا کے فرمودہ کلام کے ظہور کے وسیلے جو اس زمانے کی روشنی ہے. یقیناً یہی وہ چیز ہے جو روح القدس کا ثبوت ہے. خدا کے کلام پر ایمان لانا ہے جب وہ مجسم ہوتا ہے. وہ کلام تھا جو مجسم ہوا تھا, اور ان میں سے بعض نے اس کا انکار کیا, اس پر ہنسے, اس کا مذاق اڑایا اور اسے ایک قسمت کا حال بتانے والا کہا. کچھ نے بری روح کہا, वहाँ शवाहिद मौजूद है, जबानों में बोलना वहाँ फलों के शवाहिद मौजूद है। वहाँ सिर्फ एक ही सबूत है कि इंसान लिखे हुए कलाम पर ईमान लाए और जब वो साबित हो जाए तो उसकी रोशनी में चले। यीशु उस घड़ी की रोशनी था क्योंकि वो उस वक्त का मौजूदा कलाम था और उन्हें ये बताने की कोशिश की गई, लेकिन वो बहुत ज्यादा अंधेरे में थे और इसे समझ ना सके। आज भी बिल्कुल वैसा ही है। अब हम वक्त की मखलूक हैं, अपने रास्ते उसके स्पुर कर दे और वो मुस्तकबिल को दुरुस्त कर देगा, क्योंकि हम उसे वैसे ही देखते हैं जैसा वो कलाम में है। आपने उसे आज मौजूदा कलाम को साबित करते हुए देखा है। आप इसे चांद के निशानों में देखते हैं, आप इसे चर्चेस में देखते हैं। याद रखें, आपने कहा है चर्च में, उसका चर्च से क्या ताल्लुक है? जरा एक मिनट ठहरें। चांद चर्च की नुमाइंदगी करता है। यरूशलम दुनिया का कदीम तरीन मारूफ चर्च सिटी है। मलके सदक इस शहर से आया जो कि सलम का बादशाह था, सलामती का बादशाह था, यरूशलम का बादशाह था। ये सच है, दुनिया का सबसे कदीम शहर है और वो एक चांद था। वहाँ शरीयत नाफज की गई थी और यहाँ गैर कौमों के अंधेरे की लहर इस पर छा रही है। उसने कहा है कलीसिया यरूशलम की दीवारों को उस वक्त तक रोनती रहेगी जब तक गैर कौमों का वक्त पूरा नहीं हो जाता है, और वो यहाँ है, हम इसी में रह रहे हैं। वो सीधा वापस जा रही है और ये बात बिल्कुल पक्की है, जैसे मेरा नाम विलियम ब्रैनम है। जी हाँ जनाब, हम इसे देख सकते हैं। वो सायादार है, पेशनगोई की गई है, बरगजीदों को पुकार रही है, वो अंधेरे में टटोल रहे हैं, बाकी उनके साथ साथ चल रहे हैं। ठीक है, अब हम उसके कलाम की तस्दीक देख रहे हैं। हम ईमान रखते हैं, उसने आज के कलाम को साबित किया है। तो ये क्या है, मैं इस साल की परवाह क्यों करूं कि ये क्या लेकर आएगा? मैं अगले साल की परवाह क्यों करूं? मुझे क्या परवाह है कि मैं आज जीऊं या आज मरूं? उसकी हर बात जिसका उसने वादा किया है वो पूरी होगी, हर एक। अगर वो 2000 साल पहले वादा करके उसे आज पूरा कर सकता है तो चाहे आज लाखों साल भी गुजर जाएं, यीशु एक जाहिरी जिस्म में जमीन पर वापस जरूर आएगा, एक कलीसिया के लिए जो कि निजात याफ्ता दुल्हन है, ताकि उसे यहाँ से ले जाए। चाहे कुछ भी आए जाए, फैशन आए, कहते हैं चलते रहें, और लोग मुकम्मल अंधेरे में चलते रहें, और जो कुछ भी वो मानना चाहते हैं मानते रहें, लेकिन यीशु मसीह दोबारा जरूर आएगा। मैं मुस्तकबिल का भरोसा उसी पर करता हूँ। खुदावन खुदा, मुझे नहीं मालूम कि कल क्या होगा, लेकिन मैं जानता हूँ कि कल तेरे हाथ में है। उसका कलाम एक अजीम संगीत की मानिंद है। आप में से कितने लोगों ने कभी सिम्फनी को सुना है? अच्छा, सबने सुना है। अब याद रखें, सुरों का संगम उस वक्त होता है जब ड्रामे में मौसीकी बजाई जाती है। मेरा ख्याल है मैंने ये दुरुस्त कहा है, सिम्फनी। पीटर एंड द वुल्फ, आपको याद है वो पुरानी कहानी कि कैसे वो, मैंने ये सुनी है, कैसे वो ढोल को लेते हैं और हुद हुद की चोंच मारने की आवाज बनाते हैं और पीटर बाहर निकलता है और भेड़िया गराता है और खुद नमाई की जाती है। ये एक सुरों का संगम है। अब अगर आप सिम्फनी को नहीं समझते हैं तो ये आपके लिए सिर्फ एक शोरगुल करने वाला झुंड होगा। अगर आप नहीं समझते हैं तो आपको समझना होगा कि ये क्या है। ये सब इशारों और हरकत से होता है, लेकिन सुरों के संगम में एक ड्रामा पेश किया जाता है। अब हम देखते हैं कि सिर्फ वही शख्स सिम्फनी को समझता है जो उसका मौसीकार होता है, और वो लोग जो इसे जानने में दिलचस्पी रखते हैं वो इसकी तब्दीलियां जानते हैं और जानते हैं क्या होता है। मौसीकार हर हरकत को जानता है, आखिर से लेकर शुरू तक, शुरू से लेकर आखिर तक। क्या आप जानते हैं जिसने इसे लिखा है वो ये तर्तीब देता है, वो हर छोटे से छोटे मोड़ को जानता है। जैसे वो हर मोड़ को जानता है, वैसे ही हदायतकार को भी हदायत देने के लिए इसे जानना पड़ेगा। अब आप इसमें अपने अकीदे को कैसे शामिल करेंगे? उस छड़ी की एक छोटी सी गलती या इशारा या एक संगम पर एक छोटी सी गलत अलामत पूरे ऑर्केस्ट्रा को खराब कर देगी, पूरी सिम्फनी को बिगाड़ देगी। अब आप जानते हैं ये सच है, मौसीकार और हदायतकार को एक ही रूम में होना चाहिए। यही वजह है कि खुदा का कलाम और मुनाद खुदा की अजीम सिम्फनी है जिसे वो दुनिया के आगाज से बचाता आ रहा है। मुनाद को कलाम की तरफ देखकर ये नहीं कहना चाहिए, मेरा ख्याल है इसे ऐसा होना चाहिए और आपको इसे ऐसे करना चाहिए, उसे वैसा ही करना है जैसे संगीत के कागज में लिखा हुआ है। अंजील की मुनादी करने का यही तरीका है, जिस तरह कलाम कहता है उसे वैसे ही लें। आप जानते हैं अगर आप इसमें कोई अकीदा शामिल कर देते हैं तो आप हर चीज में गड़बड़ कर देते हैं। ड्रामे को ठीक रखने के लिए संगीत को बिल्कुल ठीक बजाना होता है। डायरेक्टर को वही करना होता है जो कंपोजर ने कहा होता है। म्यूजिक को बिल्कुल उसी ताल में बजना होता है। अब देखें, ये सब कुछ हाथों के इशारे से किया जाता है और सही आवाज देने के लिए सही किस्म का इशारा होना चाहिए। पलूस ने कहा है, अगर तुरही की आवाज साफ ना हो तो कौन लड़ाई के लिए तैयारी करेगा। अब आप मौसीकार खुदा को देखें, जिसने बाइबल लिखी है। ये मुकम्मल तौर पर यीशु मसीह का मुकाशफा है। वो वक्त के बदलाव को जानता था और वो आदमी, वो हदायतकार जो इन्हें हदायत दे रहा है। जमाने का इशारा बिल्कुल ठीक बाइबल के इशारों के साथ ही चलना चाहिए। हालेलुया, मेरे 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 खुदाया। हो भाई बहन, दुनिया के साथ क्या गड़बड़ है? मैं क्यों पागल हूँ? कहीं ना कहीं कोई गड़बड़ है। संगीत के कागज के मुताबिक मौसीकी नहीं बज रही है। वो चर्च के अकीदों और बाकी सब चीजों के साथ चल रहे हैं, जबकि ये कलाम है जिसकी मुनादी करनी चाहिए और जाहिर करना चाहिए। जब डायरेक्टर के साथ कोई गड़बड़ हो तो फिर पूरा बैंड उलझन में पड़ जाता है और उन्हें मालूम ही नहीं होता क्या करना है। वो सब अजीब लगते हैं। क्या हुआ है? कैसे हुआ है? क्या हुआ है? ये क्यों हुआ है? वो नहीं जानते हैं कि अब क्या करना है। तितर बितर हो रहे हैं क्योंकि ताल कलाम के साथ नहीं मिल रहा है। हमारे साथ यही मामला है जिसे हम आखिरी वक्त की बेदारी कहते हैं। हमारे पेंटिकोस्टल पैगाम के साथ यही मसला है। हम बाइबल की ताल से आउट हो चुके हैं। हम गए और मुनज्जम हो गए जैसे वो पहले मुनज्जम हो गए थे। वो ताल से आउट हो गए थे। खुदा रहम करे, काश मेरे पास ऐसे अल्फाज होते ताकि मैं इस बात को आपके अंदर उतार पाता जैसे ये थी, ताकि मैं इसे खोलकर आपके दिल में उतार सकता। क्या आप नहीं देख सकते मेरे भाई को, बहनों, इसे तालमेल में होना चाहिए। हदायतकार को कलाम के साथ होना चाहिए। जब ये कोई बात कहता है तो फिर कुछ और मत कहें, वरना गलत इशारा हो जाएगा और सारी चीजें ताल से बाहर हो जाएंगी। ठीक है, खुदा का कलाम एक बहुत बड़ी हमदर्दी है, बल्कि एक सिम्फनी है। माफ कीजिएगा, आपको मौसीकी वैसे ही शुरू करनी चाहिए जैसे उसने की थी। आपको उसके साथ शुरू करना चाहिए, गौर करें, ताकि उसकी ताल में आ जाएं। कहते हैं, खैर मैंने चर्च से नाता जोड़ लिया है, ये ताल नहीं है, मैंने ऐसा किया है, ये ताल नहीं है। मैं ऑल्टर पर गया और मैंने कहा, मैं ईमान रखता हूँ कि यीशु मसीह खुदा का बेटा है। शैतान भी ऐसा ही करता है। ये ताल नहीं है। देखें, आप ताल से बाहर निकल गए हैं। क्या हुआ है? हो सकता है किसी डायरेक्टर ने आपसे कहा हो, हाथ मिलाएं और रजिस्टर में अपना नाम लिखवाएं, हमारे क्लब, हमारी तंजीम में शामिल हो जाएं। आप सब ताल से बाहर हैं। फिर जब यहाँ चंद लोगों के दरमियान असल मामला शुरू होगा तो आप कहेंगे, भाई इसके मुतालिक क्या ख्याल है? वो तालमेल से बाहर हैं। वापस कलाम में जाएं और देखें कौन तालमेल से बाहर है। देखें खुदा ने क्या वादा किया है। देखें कंपोजर ने इसके मुतालिक क्या कहा है। गौर करें, आपने अपनी जमात में सबको शामिल कर लिया है। यही वजह है दुनिया चारों तरफ देख रही है, जबकि चर्च को एक रोशन और चमकते हुए सितारे की तरह देखा जाना चाहिए। एक ऐसी रोशनी की तरह जो एक पहाड़ पर चमक रही है, जिसे कोई इंसान मात नहीं दे सकता है, ना ही कोई उसे मुजरम ठहरा सकता है। और आज ये दुनिया के लिए मजाक बन गया है, क्योंकि डायरेक्टर्स कंपोजर के साथ तालमेल से हट गए हैं। देखें मेरा क्या मतलब है, वो इन चीजों को बजा रहे हैं जो वहाँ मौजूद ही नहीं है। संगीतकार शायद अभी तक नहीं जानते हैं कि क्या करना है। कलीसिया और बाकी सब एक उलझन का शिकार हैं। हम बरसों से इन तमाम चीजों पर बात कर रहे हैं और इनकी मजम्मत कर रहे हैं और अब खुद इनमें शामिल हो रहे हैं। ओ, कहीं ना कहीं कोई गड़बड़ है। गौर करें, आपने संगीत शुरू करना ही है जैसे उसने किया था। उसकी ताल में आना ही है। मौजूदा कलाम में शामिल हो जाए। देखें जिस तरह उसने इसे आगाज में किया था, जिस तरह उसने इसे वस्त में किया था, और देखें जिस तरह वो इस वक्त कर रहा है। हमेशा ऐसे ही किया है। डायरेक्टर को देखें, वो ये कैसे कर रहा है। अगर वो उस तरह नहीं करता, अगर वो आपको किसी तंजीम की तरफ इशारा करता है, तो किसी डायरेक्टर ने ऐसा नहीं किया था। एक डायरेक्टर हमेशा आपको कलाम की तरफ इशारा करता है। कदीम जमाने के नबियों ने कलाम की तरफ इशारा किया था। वो कलाम थे, वो कलाम में रहते थे, और कलाम ने क्या किया? कलाम ने खुदा को जाहिर किया। उसने उस दिन के लिए लिखे हुए कलाम को जिंदगी बख्शी, क्योंकि ये उनके पास आया था, ये उन पर नाजिल हुआ था, ये उनकी चट्टान थी। हालेलुया, यीशु मसीह खुदा का कलाम हमारी चट्टान है और इस चट्टान पर मैं अपनी कलीसिया कायम करूंगा जो कि खुदा का मुनकशिफ कलाम है। एक हकीकी ईमानदार को शालूम, सलामती हो। हम आखिरी वक्त में हैं। मैं इस चट्टान पर अपनी कलीसिया कायम करूंगा। ये कलाम का मुकाशवा है। एक ने कहा, भाई तू एक अजीम आदमी है, तू मूसा की तरह है, तू एक बड़ा आदमी है, तू ऐसा है। ऐसा कुछ भी नहीं है। लेकिन मुकाशवा ने कहा, तू खुदा का बेटा है। कहा गया, गोश्त और खून ने ये तुझ पर जाहिर नहीं किया, बल्कि मेरे बाप ने जो आसमान में है। और इस मुनकशिफ सच्चाई पर मैं अपनी कलीसिया कायम करूंगा। ये क्या है? ये कलाम है। इब्तिदा में कलाम था और कलाम खुदा के साथ था और कलाम ही खुदा था और कलाम अब भी खुदा है। बस वो आज भी यकसा है, जैसा वो था वैसा ही जाहिर कर रहा है, मूसा और एलिया से लेकर यीशु तक। और आज भी वही खुदा है। ये उसे यीशु मसीह कल आज बल्कि अब तक यकसा बनाता है। अब्रानियों 13:8 देखें, उन्होंने कभी भी किसी ग्रोह की तरफ इशारा नहीं किया, उन्होंने आपकी रहनुमाई एक शख्स की तरफ की, कलाम यानी खुदा की तरफ इशारा किया। भाई ब्रहनम, मैं कहां से आगाज करूं? सलीब से, उसके साथ सलीब से आगाज करें। तौबा करो, कलाम पर ईमान लाओ, यही बाइबल फरमाती है, फिर बाकी कलाम के ताल मेल पर अमल करें। आप कहते हैं ठीक है, मैं क्या करूं? बस कलाम के साथ ताल से ताल मिलाते रहें। अगर तौबा शनाख्त के लिए पहली चीज है तो तौबा करें। ये आपका पहला कदम है। अपना अगला कदम वहीं रखें जहां कलाम कहता है, आगे आगे और आगे उसके साथ कदम बढ़ाते रहें। अगर आप खुदा की सिम्फनी का हिस्सा हैं, तो ताल को मत तोड़ें, कलाम की ताल को मत तोड़ें। मत पूछें, अच्छा क्यों है, ऐसा क्यों है? भाई ब्रहनम, मैंने कोशिश की और जब उन्होंने मुझसे मुंह मोड़ लिया तो आप जानते हैं मैंने क्या किया। मैंने भूख से मरना पसंद किया। मत पूछें क्यों, वो ताल मेल को जानता है, इसे कैसे बदलना है और इसे कौन से मोड़ पर बदलना है। जी हाँ जनाब, क्योंकि ये लिखा है, वो इसके मुतालिक सब कुछ जानता है, वो ताल मेल जानता है। मत पूछें क्यों, बस ईमान रखें। खुदा ने तारीख के हर दौर में अपने मौजूदा कलाम के साथ नजूल फरमाया है और खुदा की ताकत से ताल को तोड़ने में कभी नाकाम नहीं हुआ है। जब मुंतखब और साबरशुदा लोगों की बात आती है, नूह के जमाने में उसके कलाम की ताल को देखें, नूह के जमाने में उसके कलाम की ताल पर गौर करें, मूसा के दिनों में, एलिया के दिनों में, यूहन्ना के दिनों में, दाऊद के दिनों में, यीशु के दिनों में और बाकी दिनों में उसने कलाम की ताल को बरकरार रखा है और ठीक आगे बढ़ते हुए इसे कभी भी नहीं तोड़ा है। वो तारीख से होते हुए यहाँ पहुँचा है और चुना हुआ बीज जिसने इसे देखा और इस पर ईमान रखा, वो ठीक इसके साथ तालमेल में आ गया। दूसरे कहते हैं ठीक है, लेकिन चर्च कहता है इसके इससे कोई ताल्लुक नहीं है, आप इसके लिए पैदा नहीं हुए हैं, आप कलाम में पैदा हुए हैं क्योंकि आप मसीह में पैदा हुए हैं, मसीह कलाम है। जी हाँ जनाब, हर एक अपने जमाने में है। आप कहते हैं खैर भाई ब्रहनम, मैं आपको बताता हूँ, मैं आगे नहीं देख सका हूँ। फिर ऊपर देखें, खुदा ने वादा किया है, अगर आप ऊपर देखेंगे तो उसे देखेंगे। शालोम, सलामती हो, खुदा की सलामती आपको आराम बख्शे। आप कहते हैं तो फिर भाई ब्रहनम, दूसरे मेरा मजाक क्यों उड़ाते हैं? आप जानते हैं दूसरे मेरा मजाक उड़ाते हैं और कहते हैं कि बाल लंबे हैं, मैं औरतों में पुराने जमाने की हूँ आदमी, क्योंकि मैं बाइबल पर ईमान रखता हूँ। वो कहते हैं आप अब हमारे साथ रफाकत नहीं कर सकते हैं, हम आपको कबूल नहीं कर सकते हैं क्योंकि आप फला फला चीज पर ईमान रखते हैं। और आप जानते हैं ये बिल्कुल उसी तरह है जैसे कलाम में लिखा गया है, खुदा आपके लिए इस बात का पाबंद है, वो यकीनन है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता वो आपका मजाक क्यों उड़ाते हैं। खुदा एक गैरतमंद खुदा है, याद रखें, उसके कलाम की खातिर दुख उठाना उसके फजल में बढ़ने का दर्द है। जब आप उसके कलाम की खातिर तकलीफ उठाते हैं तो ये बढ़ने का दर्द होता है। आप जानते हैं 10 या 12 साल का एक छोटा बच्चा दर्द को कैसे महसूस करता है, वो आता है और कहता है मामा मेरी बाहों में और मेरी टांगों में दर्द हो रहा है और वगैरह वगैरह, ये दर्द बढ़ रहा है। इससे जाहिर होता है कि उसने कुछ अच्छे विटामिन्स खाए हैं, वो बड़ा हो रहा है। और जब कोई आपका मजाक उड़ाना शुरू करता है और कहता है वो पुराने दर्द की है, उसकी तरफ देखो, वो मैं तुम्हें बताता हूँ वो पहले कैसी थी, ठीक है, बस याद रखें ये दर्द बढ़ रहा है, ये जुल्म आपके लिए अच्छा है, ये दर्द बढ़ रहा है। ओ जी हाँ, वो चौराहों और मोड़ों की इजाजत देता है, वो हमेशा ऐसा ही करता है ताकि हमें अपनी खिदमत के लिए कामिल बना सके, वो इन चीजों को होने देता है। क्या आप इसे समझ नहीं सकते हैं? वो ऐसा इसलिए करता है ताकि वो आपको उस बुलाहट के लिए कामिल कर सके जिसके लिए उसने आपको बुलाया है। ये आपका बढ़ता हुआ दर्द है। अब जानते हैं उसने दानियल के साथ भी ऐसा ही किया था। उसने आग की भट्टी में अब्रानी बच्चों के साथ भी ऐसा ही किया था। जलती हुई आग की भट्टी ने क्या किया? आग की भट्टी ने सिर्फ उन रस्सियों को जलाया जिनके साथ उन्हें बांधा गया था। भट्टी ने बस इतना ही किया, बस उन रस्सियों को जला दिया। कभी कभी हमें आजमाइशों की जरूरत होती है ताकि दुनिया की जंजीरों से हमें आजाद किया जाए और हमें दुनिया से बाहर निकाला जाए। हो सकता है पहले आपको आपके अकीदों से बाहर निकाला जाए, जैसे दरिया में डूबते हुए आदमी को पहले दरिया से बाहर निकालना पड़ता है, फिर दरिया के पानी को उस आदमी से निकालना पड़ता है। वैसे ही तकरीबन कभी कभार खुदा को करना पड़ता है। एक बार उन्हें आपको दुनिया से निकालने दें, फिर वो आप में से दुनिया को निकाल देंगे। पहले आपको दुनिया से बाहर निकालना है। कभी कभी बढ़ता हुआ दर्द यही काम कर रहा होता है। ओ जी हाँ, खुदा हर नए साल के लिए मौजूदा कलाम पर कायम रहता है। वो इस पर कायम रहता है, इस साल जो इस साल के लिए उसने वादा किया है वो उसे पूरा करेगा। जो भी हो, मैं मुस्तकबिल के लिए उसकी मर्जी के ऐन मरकज में रहना चाहता हूँ, जैसा उन्होंने किया था। इब्राहिम की तरह जब वो अपने मोड़ से मुड़ा तो वो नहीं जानता था कि वो ये कैसे करेगा। खुदा ने उससे कहा, मैं तुझे एक बेटा दूंगा। उसने उसके लिए 25 साल इंतजार किया, आखिरकार बेटा आ गया। फिर खुदा ने फरमाया, अब इसी बेटे के वसीले मैं तुझे बहुत सी कौमों का बाप बनाऊंगा। इसे ऊपर ले जा और कुर्बान कर दे, इसे ऊपर ले जा और कुर्बान कर दे, उसी चीज को कुर्बान कर दे जिसका उसने 25 साल इंतजार किया था। इसे ऊपर ले जा और कुर्बान कर दे। इब्राहिम ने कभी फिक्र नहीं की, इस बात ने उसे कभी परेशान ना किया। उसने लकड़ी उठाई और एक छोटे गधे पर रख दी और अपने बेटे को दिया। उसे पहाड़ की चोटी पर ले गया ताकि उसे कुर्बान कर दे, क्योंकि इब्राहिम जानता था कि उसने उसे मुर्दों में से ही पाया है। सारा का रहम मुर्दा था, वो बांझ थी, इसलिए कोई रास्ता नहीं था। और लड़का बस इब्राहिम 100 साल का था और वो 90 साल की थी, इसलिए वो एक वादे के मुताबिक आया था। वही खुदा जिसने वादा किया था, कहा मैं तुझे कौमों का बाप बनाऊंगा। 25 साल के बाद और 100 साल की उम्र में वो और उसकी बीवी ने उस बच्चे को हासिल किया। अगर खुदा ने उसे कुर्बान करने का हुक्म दिया था तो खुदा उसे दोबारा जिंदा भी कर सकता था। आमीन, खुदा की तारीफ हो। भाइयों, मैं अच्छा महसूस कर रहा हूँ, मैं जोश महसूस कर रहा हूँ, बहुत अच्छा महसूस कर रहा हूँ। मैं एक बात जानता हूँ कि वो उसे दोबारा जिंदा करने की कुदरत रखता है। हम इस जमाने की रोशनी यानी इस खालिस कलाम पर कायम रहेंगे। जब ये नस्ल सामने आएगी तो खुदा हमें इस नस्ल के खिलाफ चमकती हुई रोशनियों की तरह उठा खड़ा करेगा। आमीन, कोई हैरत की बात नहीं। उसने कहा है, दक्खन की मलका अदालत के दिन अपने लोगों के साथ उठ खड़ी होगी और इनको मुजरिम ठहराएगी, क्योंकि वो दुनिया के किनारे से आई थी ताकि सुलेमान की हिकमत सुने। और देखो, यहाँ वो है जो सुलेमान से भी बड़ा है। वो बेचारी मलका आगे बढ़ी जो कि एक बुत परस्त थी। उसने रोशनी को देखा और रेगिस्तान में मीलों तक सफर किया और 3 महीने ऊंट की पीठ पर सवारी की ताकि सुलेमान की हिकमत सुने, और वो बिल्कुल वहाँ खड़े रहे। सुलेमान एक अलामत थी, मसीह का अक्स था। और फिर आगे बढ़ते हुए वेस्ली, लूथर, तंजीमों और बाकियों को देखते हैं जो कि एक अलामत और एक नमूना थे जो इस वक्त हो रहा है, और वो इसमें से बराए रास्त गुजर जाते हैं। हो ठीक है, क्योंकि नए साल का तौयन खुदा ने किया है। बस उसके कलाम में रहने का आजम करें, जहाँ कलाम कहता है वहाँ चले, क्योंकि हम इख्तिताम के करीब पहुँच रहे हैं। दूसरों की तरह जैसे चुने हुए बीज ने तमाम जमानों में किया, जब उन्होंने कलाम को देखा उन्होंने क्या किया? वो इसमें दाखिल हो गए। वो दूसरे जमानों के लिए मुंतखब शुदा बीज थे क्योंकि वो लाजवाल कलाम है। कितने लोग ईमान रखते हैं कि यीशु मसीह कलाम है? ओ मेरे खुदाया, मैंने चंद दिन पहले एक प्रोग्राम सुना। वो एक मखसूस तंजीम के लोगों के बारे में था। मिस्टर HMS रिचर्ड ने कहा, उसने इस साल के लिए किताब लिखी है। मैं ऐसे आदमी से इख्तलाफ नहीं करना चाहता, हालांकि वो सेवंथ डे एडवेंटिस्ट से ताल्लुक रखता है। मैं सेवंथ डे एडवेंटिस्ट अकीदे से मुतफिक नहीं हूँ, लेकिन मैं यकीनन उस आदमी को पसंद करता हूँ, लेकिन मैं उससे इख्तलाफ करूँगा। ये नए साल के लिए HMS रिचर्ड की किताब हो सकती है, लेकिन मेरी किताब और आपकी किताब नए साल के लिए कदीम किताब है। बाइबल खुदा का कलाम है। बस वो इसी चीज के लिए जीने दे जिसके लिए उसने वादा किया है। जी हाँ जनाब, और हर आने वाले साल के लिए और हर गुजरे हुए साल के लिए वो अब्दी खुदा है जो उस अब्दी कलाम के वसीले जिंदा है जो उसने फरमाया है। जबकि बाइबल की हर सच्चाई को और इसके हर एक वादे को साबित किया गया है, जैसे तमाम जमानों में होता आया है। खुदा ने वादा किया था कि वो दुनिया को पानी के जरिए तबाह करेगा और उसने उसे मूसा बल्कि नूह के वसीले सच साबित कर दिया। उसने वादा किया था कि वो एक छुड़ाने वाले को भेजेगा और इसराइल को मिस्र से निकालेगा। वो 400 साल तक परदेश में रहे, उसने बिल्कुल वैसा ही किया और उसने कसम खाई थी कि वो दाऊद को जरूर उठा खड़ा करेगा। और कैसे दाऊद एक बेटा होगा, मसीह उसका बेटा होगा, मसीह दाऊद के जरिए आएगा, जिस तरह उसने कसम खाई थी कि वो ऐसा करेगा, उसने बिल्कुल वैसा ही किया। उसने वादा किया था कि वो यीशु मसीह के आने से पहले यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले को भेजेगा और उसने बिल्कुल वैसा ही किया। उसने वादा किया था कि वो मसीहा को भेजेगा, उसने वैसा ही किया। उसने वादा किया था कि दुनिया तंजीमों के एक बड़े ग्रुप में शामिल हो जाएगी और एक निजाम बनाएगी, एक ताकत जिसे हैवान कहा जाता है, और वो वहाँ 7 पहाड़ियों पर कायम होगी। उसने बिल्कुल वैसा ही किया। चर्च उन्हें सताएगा और मौत तक पहुँचा देगा, उन्होंने बिल्कुल वैसा ही किया। वो असलाही तारीख में कैसे नमूदार हुए, उन्होंने बिल्कुल वैसा ही किया जैसा उसने हर दौर में होने का वादा किया था, और उसने इस जमाने के लिए भी वादा किया है, और आज वो यहाँ है, उस कलाम को बिल्कुल वैसे ही जिंदा कर रहा है जैसे उसने इब्तदा में किया था। यकीनन, और जब हर वादा पूरा हो जाएगा, फतह मौत को निगल जाएगी और यीशु आ जाएगा, और जब आखिरी तस्दीक हो जाएगी, फिर जमीन पर एक अब्दी अमन आएगा और एक अब्दी शालूम होगा। एक अब्दी शालूम यानी जमीन पर सलामती होगी। जब यीशु सलामती का शहजादा आया था तो सलामती क्यों नहीं हुई थी? क्योंकि उसके जमाने में सारा कलाम पूरा नहीं हुआ था, वो आज उसे पूरा कर रहा है। लेकिन जब उसका तमाम मौदा कलाम, जो कि खुदा का एक ख्याल था, कलाम ख्याल का इजहार है, खुदा ने अपनी सोच में इसे सोचा और इसे अपने नबियों के जरिए जाहिर किया, और अब कलाम को पूरा होना है। और जब उसने हमें इन चीजों के बारे में पहले से बता दिया है, तो हम गलती ना करें और ना तारीकी में ठोकरें खाएं, फिर हम इसे पूरा होते हुए देखेंगे। अब उसने मसीह को दूसरी बार भेजने का वादा किया है, और तब वो ऐसा करेगा। जब मसीह दूसरी बार आएगा तो एक अब्दि शालोम होगा। दोस्तों सुने, जबकि हम खत्म कर रहे हैं, याद रखें, बाइबल तमाम हिकमत की बुनियाद है। ये किसी डॉक्टर PhD LLD से नहीं आती, ये खुदा के कलाम से आती है। वहाँ डॉक्टर ऑफ डिविनिटी सैकड़ों की तादाद में बैठे हुए थे, और एक छोटे 12 साल लड़के ने उन्हें नीचे बुलाया क्योंकि वो कलाम था। एक छोटा लड़का जिसके पास बिल्कुल भी तालीम नहीं थी, फिर भी वो कलाम था, क्योंकि वो उस दिन के लिए फरमुदा नूर था। वो उस कलाम को जाहिर कर रहा था, कलाम उसमें था, ऐसा होना ही था। इसमें हैरत की कोई बात नहीं कि जो कुछ उसने कहा वो सच हो गया, क्योंकि वो कलाम था। आप समझ गए हैं? जितने समझ गए हैं कहें आमीन। वो कलाम था। बाइबल को याद रखें, साल की किसी किताब को नहीं जो इंसान ने लिखी है। हर एक आदमी का कलाम झूठा ठहरे और मेरा सच्चा, बस फिरके और मजाहिद और बाकी लोग ऐसा करते हैं। जब इनमें बहुत से लोग शामिल हो जाते हैं तो सब कुछ गड़बड़ हो जाता है। खुदा ने कभी भी ऐसे ग्रोह के साथ डील नहीं की। अगर यीशु आज यहाँ होता तो क्या वो मेथोडिस्ट लोगों, बैप्टिस्ट लोगों, एडवेंटिस्ट लोगों का साथ देता, यहोवा विटनेस, क्रिश्चियन साइंस, पेंटिकोस्टल, प्रेसबिटेरियन का साथ देता? नहीं जनाब, वो यकीनन साथ नहीं देता। ये आपके और खुदा के दरमियान जाती मामला होता है। कोई ऐसे दो आदमी नहीं है जिनकी आंखें मिलती हों या वो इकट्ठे एक जैसे नजर आते हों। दो अंगूठे एक जैसे नहीं होते। खुदा जाती तौर पर डील करता है। और आप कैसे जानते हैं कि वो दुरुस्त है या नहीं है? फिर पीछे मुड़कर देखें, आया वो कलाम के साथ है या नहीं है? अगर वो कलाम के साथ है तो खुदा उससे डील कर रहा है, अगर वो नहीं है तो फिर कोई और डील कर रहा है। समझे? ये ठीक बात है। याद रखें, बाइबल तमाम हिकमत का सर चश्मा है, और इसमें मुस्तकबिल की तमाम उम्मीदें वाबस्ता हैं। शालोम खुदा की सलामती हो। एक बार एक कहानी सुनाई गई थी। एक छोटे लड़के ने अपने वालिद को उस वक्त खो दिया जब वो उसे देखने के काबिल भी नहीं था। जब उसके वालिद का इंतकाल हुआ तो वो सिर्फ एक नौजायदा बच्चा था। एक दिन वो तकरीबन 10 या 12 साल का हो गया। उसका एक और भाई था जिसका नाम जॉन था। वो अपने भाई के पास गया और कहा, ओ जॉन, वो उससे कई साल बड़ा था, कहा, क्या तुम डैडी को याद करते हो? कहा, जी हाँ। कहा, वो कैसा था? कहा, ठीक है, वो एक लंबा आदमी था और बहुत अच्छा आदमी था। वो हमेशा माँ के साथ अच्छा था। और मेरे साथ भी, और वो सबके साथ मेहरबान था। उसने कहा, खैर क्या तुम्हें उसके बारे में सिर्फ यही मालूम है जॉन? उसने कहा, भाई मैं तुम्हें बताता हूँ। कहा, हेनरी हर कोई कहता है कि मैं डैडी जैसा लगता हूँ। और कहा, हर कोई कहता है कि मेरा मजाज उस जैसा है। उसने कहा, ओ ये अच्छा है, यही वो चीज है जो मैं जानना चाहता हूँ। कहा, जब मैं तुम्हें देखता हूँ तो मुझे डैडी नजर आता है। ये बात है जब दुनिया यीशु मसीह को देखेगी जो आप में है, जो आज का लिखा हुआ कलाम है। आप दाऊद में यीशु को कहाँ देखते हैं? जब कलाम उसके वसीले से जाहिर हुआ था, आप मसीह को कैसे देखते हैं? खुदा एलिया में था, रथ को आसमान पर जाते हुए कैसे देखते हैं? आप यीशु को एलिया में कैसे देखते हैं? क्योंकि कलाम साबित हुआ था। आप मूसा में उसे कैसे देखते हैं? यीशु मूसा में था। बाइबल फरमाती है, देखें ये दुरुस्त है, वो जलती हुई झाड़ी था जिसके पास मूसा बियाबान में गया था। लोग यीशु मसीह को कैसे देखेंगे? जब वो आप में उसे देखेंगे, जब वो आप में यीशु को देखेंगे, क्योंकि उसने कहा, जो काम मैं करता हूँ तुम उससे बढ़कर करोगे, क्योंकि मैं बाप के पास जाता हूँ। क्या ये दुरुस्त है? बिल्कुल ऐसे ही दुनिया को मालूम होगा। इसलिए नहीं कि पेंटिकोस्टल वननेस वाले पेंटिकोस्टल टूनेस वालों से बढ़कर हैं, या टूनेस वाले थ्रीनेस वालों से ज्यादा हैं, या आप जो कोई भी हैं। इसलिए नहीं कि मेथोडिस्ट बैप्टिस्ट से ज्यादा हैं, या सदरन बैप्टिस्ट ने इस साल तमाम बैप्टिस्ट गिरजाघरों से तमाम प्रोटेस्टेंट लोगों के लिए इनाम जीता है। मेरे हिसाब से इस साल उन्हें बाकी सबसे ज्यादा अराकिन हासिल हुए हैं। ये चीज उन्हें मुख्तलिफ नहीं बनाती है। खुदा आपको तादाद से नहीं जानता। बुत परस्तों ने आपको तादाद में बहुत पीछे छोड़ दिया है। कैथोलिक बाकियों से आगे हैं। मुसलमानों ने सबको पीछे छोड़ दिया है। गौर करें, आप उस वक्त पहचाने जाते हैं जब यीशु मसीह आप में अपनी जिंदगी के वसीले रहता है और इस जमाने के मौजूदा कलाम में खुद को जाहिर करता है। समझे? अब वो कलाम जो मूसा में जाहिर हुआ था, एलिया में जाहिर नहीं हो सकता था, क्योंकि वो एक और जमाने में था। जो चीज नूह में जाहिर हुई थी वो मूसा में नहीं हो सकती थी, क्योंकि देखें, नूह ने कश्ती बनाई, मूसा ने लोगों की रहनुमाई की, बिल्कुल वैसे ही जैसे वादा किया गया था। एक रोशनी एक में जाहिर हुई, दूसरे में नहीं हुई, लेकिन एक ने दूसरे के बारे में बताया। पूरे नए ऐद नामे में इस घड़ी का जिक्र है। यीशु मसीह इस घड़ी का जिक्र करता है। तो फिर ये कौन है? क्या कोई आदमी है? ये यीशु मसीह खुदा का बेटा है जो जाहिर हो रहा है और कलाम का नूर जाहिर कर रहा है जिसका उसने इस जमाने के लिए वादा किया था। जब लोग आपको उसकी तरह जीते हुए देखते हैं, जब वो आपके करदार और कलाम के साथ आपके बर्ताव को बिल्कुल वैसा ही देखते हैं जैसा वो खुद था, तो फिर कलाम को जाहिर किया जा रहा है। फिर लोग यीशु मसीह को देखेंगे। इन्हें कहीं और तलाश करने की जरूरत नहीं पड़ेगी कि कहें ये अकीदा क्या सिखाता है, वो अकीदा क्या सिखाता है। वो आपको देखकर जान जाएंगे कि खुदा क्या है। शालोम, खुदा की सलामती का नूर आप पर हो। और जब इस दौर में खुदा का कलाम मुकम्मल तौर पर साबित हो जाता है और आप उसे देख लेते हैं और उस पर ईमान रखते हैं, तो आप पर शालोम। इसके साथ नए साल का आगाज करें। इसे ऐसे रखें जैसे दाऊद ने कहा है, मैं उसे हमेशा अपने सामने रखूंगा क्योंकि वो मेरे दाहिने हाथ पर है, मुझे जुम्बश ना होगी। अगर इस साल आप मौत का सामना करते हैं तो क्या फर्क पड़ता है? खुदा ने वादा किया है कि वो आपको जिंदा कर देगा। अगर कोई हादसा आपको हलाक कर देता है तो इससे क्या फर्क पड़ता है? आपके पास अबदी जिंदगी है, मैं उसे आखिरी दिन उठा खड़ा करूंगा। आमीन। कुछ भी हो जाए इससे क्या फर्क पड़ता है? कोई चीज हमें खुदा की मोहब्बत से जुदा नहीं कर सकती जो मसीह में है। भूख, खतरा, नंगापन, जो कुछ भी हो, कोई चीज हमें खुदा की मोहब्बत से जुदा नहीं कर सकती जो मसीह में है, और वो कलाम है शालोम। आए अपने सरों को झुकाते हैं। अब सब थोड़ी देर के लिए अपने सरों को झुकाए रखें। खुदा की सलामती हो। गहरा जैसा नूह के दिनों में था, वहाँ वो खा रहे थे, पी रहे थे, ब्याह कर रहे थे, शादियाँ करवा रहे थे, वैसा ही रेनो निवाडा में है और दुनिया में सुर्ख बत्ती जल रही है। बिल्कुल ऐसा ही इब्ने आदम के आने पर होगा, जैसा सदूम में था, जहाँ खुदा एक इंसान की सूरत में जाहिर हुआ था, जिसे इब्राहिम ने एलोहिम कहा था, जो कि हर हाजत पूरी करने वाला था। वो वहाँ खड़ा हुआ था, गोश्त खाया, दूध पिया और रोटी खाई, और बता सकता था कि उसके पीछे सारा खैमे में क्या सोच रही है। उसने कहा, वो इब्ने आदम के आने पर दोबारा लौट आएगा। थोड़ी देर बाकी है और दुनिया मुझे फिर ना देखेगी, लेकिन तुम मुझे देखोगे, क्योंकि मैं तुम्हारे साथ बल्कि दुनिया के आखिर तक तुम्हारे अंदर हूँगा। यहूदी अपने वतन वापस लौट रहे हैं, ये चीजें आज के जमाने में हो रही हैं। मुझे ये बताने से भी रोक दिया जाएगा कि क्या हो रहा है, लेकिन हम इसे देख रहे हैं। ये क्या है? कलाम मुजस्सम हुआ है। आपके ख्याल में अब्रानी लोगों ने क्या किया जब उन्होंने कलाम को वादे के साथ जाहिर होते हुए देखा था? वो जमीन छोड़ने के लिए तैयार हो गए थे। अगर आज आप तैयार नहीं हैं दोस्तों, तो इस नए साल का आगाज ठीक तरीके से करें। इसका आगाज इस तरह करें कि आपका हाथ खुदा के हाथ में हो और खुदा का कलाम आपके दिल में हो। कहें, खुदावंद यीशु, मैं नहीं जानता कि इस सिम्फनी का कौन सा हिस्सा है जो तू चाहता है कि मैं बजाऊं, लेकिन जब मेरे लिए वो मोड़ आएगा, जब मुझे सताया जाएगा, मेरा मजाक उड़ाया जाएगा, मुझे ठट्ठा किया जाएगा, मैं फिर भी अपनी बात पर कायम रहूंगा ताकि मेरी वजह से आपकी सिम्फनी में कोई खराबी ना हो। मैं आपके कलाम के साथ कायम रहूंगा, चाहे कुछ भी हो, मैं वहीं कायम रहूंगा। और जब मौत मेरे दरवाजे पर दस्तक देगी तो ये सिम्फनी का हिस्सा है। मुझे मालूम है जिस तरह मौत मेरे दरवाजे पर आ गई है, इसी तरह जी उठना भी एक दिन जरूर होगा और तू मुझे उठा खड़ा करेगा। ये तेरी सिम्फनी का हिस्सा है। खुदावन, मुझे आज इसका हिस्सा बनने दे। क्या तू ऐसा करेगा? कितने लोग ये हलफ उठाना चाहेंगे और कहेंगे, ब्रदर ब्रैनम इस नए साल का आगाज इस मीटिंग से शुरू कर रहे हैं। मैं अब खुदा से वादा करता हूँ कि मैं साबित कदम रहूँगा और उसके वादा शुदा कलाम पर कायम रहने में कभी नाकाम नहीं होऊंगा और बिल्कुल वैसे ही जिंदगी बसर करूंगा जैसे उसने वादा किया है, नरमी और आजिजी के साथ, ताकि खुदा मेरी जान को ले और इसे अपनी अजीम सिम्फनी में शामिल कर दे, क्योंकि इस ग्रुप को वो इन आखिरी दिनों में उठा खड़ा करेगा। मैं अपना हाथ उठाने जा रहा हूँ। भाई ब्रैनम, आपकी तरफ नहीं बल्कि खुदा की तरफ मुझे दुआ में याद रखा जाए। खुदा आपको हर जगह बरकत दे। खुदावंद आपको बरकत दे। मेरे हाथ भी बुलंद हैं। खुदावंद मुझे ले। खुदावंद खुदा, कभी भी मुझे यहूदा की तरह एक्स्ट्रा पैसों के लालच में ना पड़ने देना। दुनिया के किसी फैशन या कोई आपकी पीठ थपथपाकर ना कहे, ओ भाई ब्रैनम ये बात है, नहीं नहीं ऐ खुदा मेरे साथ ऐसा कभी ना होने देना। मैं बस खुदावंद के चंद हकीरों के साथ अपना रास्ता इख्तियार करूंगा। मैं इंसान का भाई बनूंगा, हर वो काम करूंगा जो मैं कर सकता हूँ। खुदावंद लोगों को दिल से प्यार करूंगा, लेकिन खुदावंद मुझे कभी भी इस कलाम से हटने ना देना। मैं आखिरी दिन जिंदा होना चाहता हूँ और सिर्फ ऐसे ही लोग हैं जो इस अजीम सिम्फनी में शामिल हैं। खुदावंद मैंने आज दोपहर इसे समझाने की कोशिश की है। ये वही चीज है जो संगीत के कागज के इख्तिताम में आएगी, जब अजीम क़यामत होगी और तमाम फरिश्ते तालियां बजाते होंगे और मुकद्दसीन दाखिल हो जाएंगे। ये वो लोग हैं जिन्होंने उस अजीम ड्रामे में अपना किरदार अदा किया है जो हम अदा कर रहे हैं। खुदावन यही दुआ है। हम जानते हैं कि एक ड्रामे में वो नकाब बदल लेते हैं, एक हालत से दूसरी हालत में चले जाते हैं, और बिल्कुल तूने भी यही किया था। तू एक अजीम रूह खुदा यहोवा से आया था और तूने एक इंसान का नकाब पहन लिया था और अपने आप को बदल लिया था। तूने खुद को बदल लिया था, तूने अपना खैमा लगा लिया था। तू खुदा की तरफ से नीचे आ गया और इंसान बन गया ताकि तू इंसान को मखलसी देने के लिए कुर्बान हो सके। तूने अपना निकाब बदल लिया था, तूने फिर इसे बदल दिया है। तूने खुद को इन लोगों में छुपा लिया है जो यकीन कर रहे हैं और ठीक उसी तरह अमल कर रहे हैं जैसे तूने यहाँ अपने कलाम में लिखा हुआ है। मुबारक है वो आंखें जो इसे देखती हैं, मुबारक है वो दिल जो इसे कबूल करते हैं, मुबारक है वो कान जो इसे सुनते हैं, क्योंकि जब सिम्फनी खत्म हो जाएगी तो क़यामत हो जाएगी। ऐ खुदा हम सब वहाँ जाना चाहते हैं, क्या तू ऐसा करेगा? इस छोटे ग्रो को बरकत दे। इस तरह बोलते हुए, ऐ बाप हम जानते हैं कि ये टेप पूरी दुनिया में जाएगी और आज यहाँ फिनिक्स में ये एक उम्दा छोटा सा ग्रुप बैठा हुआ है, ये मौजूदा सामीन है। ऐ खुदा 15 बरस की सख्त मुनादी और सरजनिश को तू जानता है, और ऐ खुदा तू जानता है इसका सबब मोहब्बत है। मोहब्बत तंबी करती है, मोहब्बत मलामत करती है, मोहब्बत नज़्म व ज़ब्त कायम करती है। ऐ खुदा क्या मैं इस हफ्ते इन लोगों के लिए खुद को वक्फ कर सकता हूँ? और ऐ खुदावन तू हमें अपने कलाम के मुताबिक तरबियत दे, उन्हें दे कि हम तेरी कुव्वत से बीमारों और मुसीबत जदों को उठते हुए देखें, अंधी आंखों को खुलते हुए देखें, और इस कमरे में रूहुल कुद्दस जाहिरी तौर पर नजर आए। हर एक मुनाद और हर एक चर्च आग से भर जाए। खुदावन आने वाली बिजनेसमैन कन्वेंशन में इस शहर के हर एक बिजनेसमैन के दिल में खुदा के लिए आग लग जाए। खुदावन ये बख्श दे, हम नहीं जानते कि इसके मुतालिक क्या करना है, सिर्फ इतना जानते हैं कि जो कुछ ईमान से मांगेंगे वो मिल जाएगा। हम खुद को आपके सुपुर्द करते हैं यीशु मसीह के वसीले जो हमारा खुदावंद है। आए अपने कदमों पर खड़े हो जाएं। मेरी तकरीर कमजोर है, मैं अपने अल्फाज गलत अदा करता हूं और मैं ये कहना चाहता हूं क्योंकि मुझे ऐसा कहने पर मजबूर किया गया है। यहाँ कितने लोग हैं जो समझ गए हैं, वो अपने हाथ बुलंद करें कि मेरी खुदा की सिम्फनी से क्या मुराद थी। अपना हाथ बुलंद करें, शुक्रिया। अच्छा है, क्या आप ईमान रखते हैं? फिर ये एक सिम्फनी है, देखें आपको पता चल जाएगा जब ये एक मोड़ पर आकर ठहर जाएगी तो हर कोई हैरान हो जाएगा। मैं इसे जंक्शन कहता हूँ, मैं मौसीकी नहीं जानता। यहाँ एक मौसीकार है, देखें वो मेरे गलत तरीके को माफ कर देगा, लेकिन ये बात है ये सबकत ले रहे हैं। अमल करने के लिए कुछ तो होना चाहिए। ये सुर बहुत नीचे चला जाएगा, बहुत नीचे तक। आप सोचेंगे ये क्या है, लेकिन देखें अगर आप इसके ताल में आ जाएंगे तो आप इसे समझ जाएंगे। खुदा को समझने का वाहिद यही तरीका है कि आप उसके ताल में शामिल हो जाएं। ये क्या है, मैं ये कैसे करूंगा? भाई ब्रहनम, मैं भी सच्चा मेथोडिस्ट, बैप्टिस्ट या पेंटिकोस्टल हूँ। ये ताल नहीं है, ताल खुदा है, खुदा कलाम है, कलाम खुदा है, खुदा की ताल उसके कलाम की फरमाबरदारी है। फिर जब आप कलाम की अतायत करते हैं वो आपके लिए ठीक ताल को बजाता है, फिर आप अपनी जगह ले लेते हैं। ये नीचे 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 जाता है, फिर ऊपर चढ़ जाता है। ये जो भी है, आप इन मोड़ों को जानते हैं। कभी कभी आप कहते हैं ओ दिल के दर्द और आजमाइशी हैं, क्या खुदा ने नहीं कहा खुदा से मोहब्बत करने वालों के लिए हर चीज मिलकर भलाई पैदा करती है? और मैं अपनी सिम्फनी को बजा रहा हूँ और आप जानते हैं आपको तकलीफ पहुँचाई जाती है और मारा जाता है और सताया जाता है और मजाक उड़ाया जाता है। याद रखें, ये वो हिस्सा है जो इस तरफ जाता है। अगर ऐसा नहीं है तो सिम्फनी धुन से बाहर है। अजीम मौसीकार बखूबी जानता है कि इसमें क्या क्या है। वो जानता है, वो आपको इब्तदा से जानता है। उसने बनाए आलम से पेशतर आपका नाम बरा की किताबे हयात में लिखा हुआ है। क्या आप ईमान रखते हैं? वो जानता है कि आपको क्या करना है। कोई फर्क नहीं पड़ता ये ताल कितना नीचे चला जाता है या कितनी तारीकी नजर आती है, इसे बिल्कुल इसी तरह होना है। लेकिन याद रखें, अगर ये मौत के साए में चला जाता है, क़यामत और जिंदगी मैं हूँ, मैं इसे दोबारा उठा खड़ा करूँगा। और जब अजीम हदायतकार नीचे आएगा और इस छड़ी को नीचे रखेगा तो मस्जिद देर ना होगी। वो फरिश्ता जो कि मुकाशफा 10 बाब में है, जब उसने अपना एक पांव जमीन पर और एक समुंदर पर रखा और उसके सर के ऊपर एक धनक थी, उसने कसम खाकर कहा मस्जिद देर ना होगी। जब वो वक्त आएगा तो आपको मुर्दों में से उठा खड़ा करेगा, जबकि बाकी वहीं पड़े रहेंगे लेकिन आप अंदर चले जाएंगे। सिम्फनी में कायम रहें, खुदा के कलाम में कायम रहें, चाहे ये जितना भी मुश्किल क्यों ना हो। जहाँ कहीं खुदा ताल दे रहा हो उसके साथ मजबूती से जुड़े रहें। कभी कभी वो बंधन तोड़ने के लिए और आपको आजाद करने के लिए मुसीबत पैदा करता है, वो ऐसा करता है। आप कहते हैं खैर मुझे नहीं मालूम कि मैं क्या करूं। वो जानता है क्या फर्क पड़ता है, आप बस किरदार अदा कर रहे हैं। वही एक है जिसने आपको अपने हाथ में लिया हुआ है, वही आपको हदायत दे रहा है। याद रखें, ये सब कुछ एक इशारे से किया गया है। हम उस वक्त को देख रहे हैं जिसमें हम रह रहे हैं, उस इशारे को देख रहे हैं जिसमें हम रह रहे हैं। बस हम जानते हैं कि सिम्फनी आज क्या कर रही है। ये अलैदगी का वक्त है जो अंधेरे से रोशनी को अलग कर रहा है। आए इकट्ठे कहते हैं ताकि आप भूल ना जाएं, क्योंकि मैं ये महसूस कर रहा हूँ कि ये कहूँ ये तारीकी में रोशनी को ले रहा है। आए दोबारा कहते हैं ये तारीकी में रोशनी को ले रहा है। ये खुदा की सिम्फनी है, वो इसे आसमानों में दिखा रहा है, वो इसे ब्लैक बोर्ड पर दिखा रहा है, वो इसे अपने आप में दिखा रहा है। उसने कलाम में इसका वादा किया है, हम इसकी तस्दीक देख रहे हैं। वो बीज को भूसे से अलग कर रहा है, वो रोशनी को अंधेरे से अलग कर रहा है। क्या आप पूरे दिल से उसका यकीन करते हैं? तो फिर आए अपने अच्छे गीत को गाते हैं। और मैं पादरियों से एक बात कहना चाहता हूँ, बस एक मिनट भाइयों। खुदावंद आपको बरकत दे, अपनी जमायतों को बर्खास्त करने और उन्हें यहाँ लाने के लिए आपका शुक्रिया। वहाँ मौजूद पादरियों के लिए मैं आपका बेहद शुक्रगुजार हूँ। मैं सिर्फ यहाँ हूँ। भाइयों, मैं ये कहना चाहता हूँ, मुमकिन है कि यहाँ मेथोडिस्ट, बैप्टिस्ट, प्रेसबिटेरियन हो। क्या आप सुन रहे हैं? जो मुनादी मैं पेंटेकोस्टल लोगों के सामने करता हूँ, वही आपके सामने भी करता हूँ, बिल्कुल वैसे ही। देखें, इसमें कुछ फर्क नहीं है। अगर मैं किसी आदमी से सख्ती से इख्तलाफ ना कर सकूं, तो मैं उससे मोहब्बत करता हूं। क्योंकि अगर मैं सिर्फ इख्तलाफ करने के लिए उससे इख्तलाफ करता हूं, तो मैं एक मुनाफिक हूं। मैं यहां खड़ा होने के काबिल नहीं हूं। लेकिन अगर मैं रफाकत और मोहब्बत और समझ बूझ की वजह से उससे इख्तलाफ करता हूं, चाहे वो कुछ भी करे, वो फिर भी मेरा अजीज भाई है, मैं उसके साथ खड़ा हूँ। जी हाँ, यकीनन ये बिल्कुल दुरुस्त है। अगर ये मेरे दिल में नहीं है, तो खुदा मुझे इस मंबर से उतार दे, मैं यहाँ रहने के काबिल नहीं हूँ। ये ठीक है, मैं ये मोहब्बत की वजह से कहता हूँ। और कुछ तो है जो मैं आता हुआ देख रहा हूँ, और उसने अब तक मुझे इस पर कभी गलत नहीं होने दिया, क्योंकि ये हमेशा उसका कलाम रहा है। इसलिए खुदा आपको बरकत दे। आए एक लम्हे के लिए अपने सर को झुकाते हैं, इस अच्छे पुराने गीत को गाते हैं जो हम अक्सर गाया करते हैं, मैं उससे प्यार करता हूँ, मैं उससे प्यार करता हूँ। अगर पियानो बजाने वाला या जो भी है या जिनके पास म्यूजिक है, हमें इस पर एक छोटा सा कोड दें, मेरा ख्याल है। जी हाँ, ठीक है, आए गाते हैं, म्यूजिक के बगैर ही गाते हैं। अब हर कोई अपने झुके हुए सरों के साथ। मेरा ख्याल है उन्होंने टेप को बंद कर दिया है। देखें, ये टेप हर जगह जाती है।